हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव।
ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास स्वामी शरण कहू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करू मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी आप पालन करता, खल कामी मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोच सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलाऊं दयामय, किस विध मिलाऊं कृपामय, तुम स्वयं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी आप रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ करुणा हर। बढ़ाओ द्वार पड़ाते। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ओ स्वामी कष हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट सात जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे।
ॐ जगनेन जगन्माय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजादिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयम् वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यम् कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्ट्यम् राज्यम् महाराज्य महाधिपतयमयम् समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः आन्तादात् परादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणि तदप्येशो विहितो मरुतः परिवेशारो मरुतस्यावसन्न गृहे आवीक्षितश्च कामप्रे विश्वे देवाः तवा सदा इति। ॐ विश्वतश्चक्षुर्विश्वतोमुख विश्वतो बाहुर्विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्याम् धमति सम्पत्त्रयैर्ध्यावा भूमि जनयन्न देव एक सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वाम् पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीकृष्णाय नमः। यथा लब्धोपचारमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि। पुलस्यावर रामचन्द्र की जय। मोर्मुकुटवंशी वाले की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय।
श्रीकृष्णगोविन्दहरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे तीर्थास्पदं శివ విరించినుత శరణ్యం భృత్యార్తిహం ప్రణతపాలభవాబ్ధిపోతం వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం. కస్తూరీ తిలకం లలాటపటలే వక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే వరమౌక్తికం కరతలే వేణూకరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనం సులలితం కంఠే చ ముక్తావళీ గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గోపాలచూడమణి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. యోస్యోత్ప్రేక్షకవాదిమధ్య నిధనే యో వ్యక్తజీవేశ్వరో సృష్ట్వేదమను ప్రవిశ్య ఋషిణా చక్రే పురశాస్తిత యం సంపద్యజాత్యజామనుషై సుప్తకులాయం యథా తం కైవల్య నిరస్తయోనిమభయం ధ్యాయేదజస్రం హరి. యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాశ్చ హస్త చరణ శ్రవణ త్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. యం ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాతరాజ్జువావ పుత్రేతి తన్మయతయా తరవోభినేదు సర్వభూతహృదయం మునిమానతోస్మి. యః స్వానుభావమఖిల శ్రుతిసారమేక మధ్యాత్మదీపమతితీర్షతాం తమోంధం संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां आनन्ददामनि चिदेकरसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषाम् सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तरिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जू अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार सदा सर्वदा निर्विकार सर्वाधार सर्वाकार परब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटिशय प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं परम भागवत संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर प्रणाम कर श्रीमद् भागवत कथा रस रसिक समस्त सज्जनों एवं भक्ति कल्पा माताओं बहनों को यथा योग्य सादराभिवादन कर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के बाद की कथा को आज नंदोत्सव के साथ प्रारंभ करते हैं। देव जी के यहां अवतार लिया और वसुदेव जी भगवान को लेकर सीधे नंद जी के यहां गए, ये क्या चीज है? बड़ा विलक्षण भाव है। वसुदेव शब्द का अर्थ आपने पहले सुना था चौथे स्कंद में। वसुदेव का अर्थ होता है चित्त। चित्त में जब परब्रह्म परमात्म वृत्ति का स्वरूप उतरता है तो उसकी फलश्रुति क्या होती है कि आनंदानुभव होता है। जब तक परब्रह्म परमात्म तत्व का चित्त वृत्ति में अवतरण के पश्चात भी आनंदानुभूति नहीं होती तब तक वो परब्रह्म परमात्मा केवल वाचनिक है, वाणी का विलास है। और जब वो आनंद में आता है तभी वास्तव में परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप खिलता है। इसलिए वसुदेव जी महाराज नंद जी के यहां पर भगवान को छोड़ करके आए। एक को भगवान मिला और एक ने भगवान को प्राप्त किया, परंतु वो गए कहां है? वो गोकुल में गए हैं और नंद के लिए गए हैं, नंद के पास गए हैं। गोकुल का अर्थ है गो माने इंद्रियां, कुल माने समुदाय। जब परब्रह्म परमात्मा का अनुभव होता है तो सब इंद्रियों में उस रस का आस्वादन होता है। जिन इंद्रियों से संसार के विषय भोगे जाते थे, अब वो इंद्रियां परब्रह्म परमात्मा के परिपूर्ण आनंद से भर गई। उन इंद्रियों में अब और विषयों के स्वाद की, विषयों के सुख की कोई गुंजाइश नहीं रही। उसके लिए ये सब प्रसंग बताया था। इसीलिए नंद जी के ब्रज का नाम आया नंद ब्रजम शौर्य रूपेत्य तत्रतान। ये कैसी लीला हुई है किसी को मालूम नहीं चला। देखो हम लोग थोड़ा सा भजन करते हैं, थोड़ा सा साधन करते हैं, यदि उसमें थोड़ा भी भगवत रस का अनुभव होने लगता है तो हम उसका व्याख्यान करने लगते हैं। हमको बड़ा सुख मिलता है, हमको ऐसा होता है, परंतु वास्तव में जिसको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती वो हल्ला करता है क्या? वसुदेव जी को भगवान ने दर्शन दिए, देवकी ने दर्शन दिए, हल्ला किया, चुप रहे। ये चीज हल्ला करने की नहीं होती। और कोई यह समझे कि भाई हमको परमात्मा का अनुभव हो गया, हम जानते हैं दूसरे नहीं जानते, तो ऐसा यदि परमात्मा का कोई घेराव भी करे तो उचित नहीं है। इसलिए वसुदेव जी महाराज नंद जी के यहां भगवान को रख करके आते हैं। बड़ा विचित्र रहस्य है, क्या रहस्य भगवान जाने, परंतु इतना जरूर है कि जो भगवान का हो जाता है उसके द्वारा जो क्रिया होती है वो भगवत प्रेरित क्रियाएं होती है। और कितनी सुंदर बात भगवान ने कही थी कि तुम हमको पुत्र भाव से भी भजना और ब्रह्म भाव से भी भजना। लेकिन भगवान तो वसुदेव जी के यहां से रवाना ही हो गए। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास न रहूं तब मुझे ब्रह्म भाव से तुम प्राप्त करना, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तब मुझे पुत्र भाव से देखते रहना। आप भागवत की गहराई को खूब अच्छी तरह से देखिए कि वसुदेव जी महाराज ने निराकार स्तुति की है भगवान की, और देवकी ने भी निराकार के साथ में थोड़ा प्रेम के कारण से साकार स्तवन किया। और यही भगवान को जब आगे कुरुक्षेत्र के बाद मिलेंगे तो देखना कैसी साकार स्तुति करेंगे इनकी। वसुदेव और देवकी ने जब भगवान को कहना पड़ा कि देखो मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं, तब इतना विशेष आकर्षण नहीं हुआ। और वसुदेव और देवकी ने जब कुरुक्षेत्र में संतों का संग किया और उनको ये पता चला कि तुम्हारे पास गोद में खेलने वाले सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, तो उनकी विशेष भक्ति जागी। कारण क्या है? जब तक हम लोग संतों के सन्मुख होकर भगवान की बात नहीं सुनेंगे तब तक भगवान की बात समझ में नहीं आएगी, चाहे भगवान खुद आकर बता दो। बड़े रहस्य के प्रसंग है। अपने तो भाई इतनी बात है कि वसुदेव और देवकी ने पुत्र भाव और ब्रह्म भाव दोनों से भगवान का भजन किया। भजन करने का अर्थ भगवान से प्रेम किया। तो जब भगवान नहीं मिले तब ब्रह्म भाव से, और जब भगवान मिलते हैं तो पुत्र भाव से उनकी आराधना करते हैं। वसुदेव जी महाराज ने जब नंद जी के वहां कृष्ण को छोड़ दिया तो वहां से वे माया को उठा लाए। माया का प्रभाव ये पड़ा कि सब दरवाजे वापस जो पहले भगवान के प्रताप से खुल गए थे वो वापस बंद हो गए। आश्चर्य की बात है कि यहां भगवान का और भगवान की माया का दोनों का प्रभाव पड़ा। भगवान के प्रभाव से तो सोता हुआ प्राणी जगा करता है। हमारे जेलखाने के सारे आदमी सो गए, क्योंकि वो भगवत संकल्प के अनुसार भगवान की माया काम करती है, तो सब सो गए। वहां माया का राज्य था और दरवाजे खुल गए, ये भगवान का प्रभाव था। और जब भगवान नंद जी के वहां रहे और नंद जी को कुछ भी होश नहीं हुआ, यशोदा जी को कुछ भी पता नहीं चला, ये क्या चीज थी? भगवान के संकल्प से मिश्रित माया का राज्य था। और जब वो माया को लेकर वसुदेव जी जेल खाने में आए तो सब पूर्ववद आवृता, सब ढक गए। इतने में ही माया ने रोना चिल्लाना चालू किया, तो जेल खाने वाले लोग कंस के पास में गए। कंस बड़ा घबराया कि देवकी के आठवें गर्भ ने जन्म ले लिया है। वो अपने हाथ में तलवार लिया, जैसा वो पड़ा था वैसे ही रवाना होके आ गया। बाल खुले हुए हैं, जैसा आलस्य निरालस जैसा भी पड़ा था वैसे आ गया। वो आकर के सीधा जेल खाने में आया, बड़ी क्रूरता से वो देवकी की ओर देख रहा था। डरती हुई देवकी ने कहा कि भैया कंस, क्या करते हो? मेरे पहले तुमने 6 बेटे तो मार दिए, भगवान ने एक कन्या दी है, कम से कम कन्या को तो मत मारो। कंस ये कहां सोचने वाला, कंस ने लपक करके उस माया के चरणों को पकड़ा, छीना और उसको घुमा करके जो ही वो पत्थर पर पटकने वाला था, त्यों ही माया आकाश में चली गई और उसके 8 भुजा हो गए। बड़े सुंदर उसने वस्त्र पहन रखे हैं। वो हतप्रभ होकर उस माया को देखने लगा, ये क्या हो गया? वो आंख फाड़ फाड़ करके देख रहा है। उसी समय में उस माया ने अपने असली रूप में आकर के कंस को फटकारते हुए कहा कि मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा मारने वाला पहले तुझे मारने वाला कई पर्वी जन्म ले चुका है। इतना कहकर वो अदृश्य हो गई। अब कंस इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट है, पाप भी कमा लिया और मारने वाले को वो पकड़ भी नहीं सका। अब कंस ने देखा क्या करूं, घबरा गया। वो वसुदेव और देवकी के चरणों में गिर गया कि मैंने बहुत पाप किए, मैंने इतने पाप किए, बाहर आवाज हो रही है, बहुत पाप किए हैं। मां सोचतम महाभागव, जो समय बीत गया सो तो बीत गया, होना सा तो सो हो गया, मैं भी क्या कर सकता हूं? ये आकाशवाणियां भी तो झूठ बोलती है, देवकी के 8वां बेटा होगा वो मारेगा। अपनी मृत्यु से कौन नहीं घबराता वसुदेव जी? और सुनो देवकी, मैं किस लोक में जाऊंगा, इतना पाप मैंने किया है, अब तुम क्षमा कर दो, क्योंकि पापी का पाप क्षमा से ही उतर सकता है, दूसरा कोई उसके पाप समाप्ति का उपाय नहीं है। अब हो गया सो तो हो गया। देखो आत्मा तो नित्य है और शरीर मरने वाला होता है, तो मैंने मारा और मेरे बच्चे मरे, ऐसा तुम विचार मत करना। ऐसे करके उनके चरणों में गिर करके उनको बंधन मुक्त कर दिया, वसुदेव और देवकी को। वसुदेव और देवकी उस समय वहां से विदा हुए और कंस से यही कहा कि देखो भाई, बात जो तुम कहते हो वो बिल्कुल ठीक है, अज्ञान के अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति, तेरा मेरा और मारक और म्रियमाण ये भेद दृष्टि से देखा करता है, वही हर शोक आदि को प्राप्त होता है। इधर कंस उनको विदा करने के बाद अपने महल में आया है और रात्रि व्यतीत होने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों को बुला करके कहा कि क्या करना चाहिए, देवकी के तो 8वां पुत्र नहीं हुआ, ये तो मैंने स्वयं ने जाकर देखा है, और ये जो कहा है कि तुमको मारने वाला कहीं भी पैदा हो गया है, अब वो कहां पैदा हुआ है, क्या हुआ है, हमको पता नहीं है, मेरा ऐसा विचार आता है कि हमको मरना तो जब पड़ेगा ही, तो मैं क्यों नहीं जाकर जंगल में बैठकर तपस्या करूं। लोगों ने कहा, महाराज डरते क्या हो, आकाशवाणी से तो आप डर रहे थे, एक आकाशवाणी झूठी निकल गई और ये वाणी भी कौन सी सत्य निकलने वाली है। यदि कहीं जन्म लिया है तो भी वो छोटा बच्चा ही तो होगा, हम उसको मार देंगे। आप डरो मत, ब्रह्मा से क्या डरते हो, ब्रह्मा तो तपस्या करने में लगा हुआ है, शंकर है वो जंगल में रहता है, विष्णु है वो एकांत में रहता है, कभी लोगों से मिलता भी नहीं है। ये तीन शक्तियां ही तो हैं, डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरे देवता है वो विष्णु की शक्ति से काम करते हैं। सारे देवताओं को बल देने वाला एक विष्णु है। विष्णु को बल मिलता है मनुष्यों से, मनुष्यों को बल मिलता है धर्म के काम से, और धर्म का अनुष्ठान होता है वेदों से, और वेदों की क्रिया जानते हैं ब्राह्मण लोग, और ब्राह्मण लोगों को वैदिक कर्म करने के लिए पड़ती गाय की आवश्यकता है। तो जिस गाय से ये धर्म करते हैं उस गाय को मारेंगे, और ब्राह्मण लोग जो धर्म का प्रचार करते हैं उन ब्राह्मणों को मारेंगे, और जो वेद है उन वेदों का हम नाश करेंगे, यज्ञ आदि हम कर्म होने नहीं देंगे। देखते हैं देवताओं को फिर कैसे बल मिलता है, कैसे विष्णु को बल मिलता है। इसलिए आप कोई चिंता न करें, और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको मारने का उपाय किया जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस कंस के मन में कितना वैराग्य आया था वसुदेव और देवकी को देखने पर, वही कंस दुष्ट व्यक्तियों के संग में पड़ करके और छोटे छोटे बच्चों को मारना उसने उचित मान लिया। देखो संगत का कितना असर पड़ता है। वसुदेव और देवकी का संग किया था तो कैसा उसको आत्मज्ञान हुआ था। वो कहता था कि आत्मा तो नित्य है, शरीर मरता है। और जब वो दुष्ट मंत्रियों के संग में गया तो छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए उसने सहमति प्रदान कर दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो स्वयं काल वश में आता है, काल पाश में आता है, वो सबसे पहले अधर्म में अपना मन लगाता है। तो जो महापुरुषों का, बड़े पुरुषों का अपमान करता है, उसकी आयु, उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका धर्म, उसका लोक परलोक, ये सब समाप्त हो जाते हैं। ये इधर बात तो हमारे कंस के यहाँ हुई, अब आओ अपने नंद बाबा के यहाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इधर नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल की। नंद जी को पता चला कि हमारे बहुत वर्षों के बाद बुढ़ापे में एक लड़का पैदा हुआ है, तो नंद जी आनंद में भी बहुर हो गए। देखो यहाँ लिखा है जाताल लहदे, जाताल लहदे माने बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। ये आनंद देखो वसुदेव जी को नहीं हुआ है, वसुदेव जी की गोद में भी रहे, और वसुदेव जी ने देखो उनके दर्शन भी किए और चतुर्भुज रूप से दर्शन किए, पर ये ऐसा आनंद नहीं हुआ जैसे नंद जी को हुआ है। क्या बात है ये, क्या कारण से नहीं हुआ, बड़ा रहस्य है भाई। वो रहस्य तो महापुरुष ही जान सकते हैं, अपन कहां वहां तक पहुंच सकते हैं। अपना इतना ही कहते हैं कि भगवान जब आनंद के रूप में जिसको आनंद प्रदान करते हैं, ये आनंद की, आनंद का प्रदान है ये भगवान स्वयं करते हैं। तो नंद जी को भगवान ने खूब आनंद का दान दिया। नंद जी महाराज ने वहां पर उनके जन्म का उत्सव मनाया और हजारों हजारों लाखों लाखों गवों का दान उन्होंने दिया। तिल के बड़े बड़े सात पहाड़ बना बनाकर दान में दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दान क्यों दिया जाता है, दान अपने पास रहने वाले वस्तुओं की शुद्धि के लिए दान दिया जाता है। हमारे पास जो वस्तु होती है उसमें हमने पहले कामना की थी, अब ममता करते हैं, फिर लोभ करते हैं, तो वस्तु में अपवित्रता आती है। अब उस अपवित्रता को मिटाने के लिए दान दिया जाता है ताकि उस वस्तु से ममता और उसकी कामना हटे। वहां पर बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग, गायक लोग आए हुए थे, खूब वे वसुदेव जी के घर पर बैठे हुए दुंदुभियां बजा रहे थे, बंसुरियां बजा रहे थे, सब जो है आनंद में डूबे हुए थे। सारा ब्रज है वो सजाया गया, जाने क्यों सजाया गया, अब लोगों को पता ही नहीं है कि ये परब्रह्म परमात्मा है क्या, कुछ पता नहीं। पर नंद जी के छोकरा हुआ तो लोग आनंद मनाए रहे, तुम्हें क्या मिला इससे कि पता नहीं क्या हमारे मन में आनंद आ रहा है। नंद जी के बच्चा पैदा होने से हमारे मन में जाने क्यों आनंद आ रहा है। घर घर में ध्वजा है, पताका है, और घर घर में अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके लोग नंद जी के वहां से आ रहे हैं। घर घर से लोग तरह तरह के उपहार लेकर के आ रहे हैं। अब देखो थोड़ी सी बात आपको सुनाते हैं गोपियों की दशा। जब गोपियों को पता चला कि नंद जी के लड़का हुआ है, तब गोपियों ने अपना खूब श्रृंगार किया। देखो ये गोपियों का पहला श्रृंगार और अंतिम श्रृंगार है। ये भागवत को गहराई से देखना चाहिए, केवल ऊपर 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 से चले जाते हैं तो रहस्य का पता नहीं चलता है। गोपियां क्या है, अलभूषयान चक्रु। अब देखो कृष्ण से मिलने जाना है उनको, अभी तो कृष्ण नाम नहीं पड़ा है, पर अब समझने के लिए तो कहा ही जाएगा। वे नंद के लाल से मिलने के लिए उतावली हैं, परंतु कोई काजल लगा रही है, कोई कपड़ा पहन रही है, कोई अपने बालों को संवार रही है, कोई अपने गहने हैं गहने को ले ले करके पहन रही है, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके काजल वगैरह लगा करके, और नव कुमकुम किंजल का मुख पंकज भूतय है। देखो कैसा कैसा उन्होंने श्रृंगार किया है, सब तरह से अपने मुखमंडल को बहुत अच्छा बनाया है। और यही गोपियां देखो जिस समय भगवान बांसुरी बजाएंगे जंगल में, और उस समय गोपियां श्रृंगार करती हुई श्रृंगार को छोड़कर के कृष्ण के पास जाएंगी। आज ये श्रृंगार कर रही है और उस दिन श्रृंगार क्यों नहीं करेंगी, कल के प्रसंग में आ जाएगा। ये बात कल के राजपंचाध्याय के प्रसंग में आ जाएगा। ये वहां श्रृंगार क्यों नहीं हो रहा है, वहां श्रृंगार इसलिए नहीं हो रहा है और यहाँ श्रृंगार किस लिए हो रहा है, कि वो श्रृंगार का अभाव कृष्ण के लिए और यहाँ श्रृंगार वो भी कृष्ण के लिए। ये गोपियां वास्तव में वेद की ऋचाएं थी, जिन्होंने न इति न इति न इति से परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। एक दिन इन सब ऋचाओं ने भगवान से कहा कि महाराज हमने आपका वर्णन किया न इति से, कभी आप हमसे मिलोगे, कि तुमसे तो ऐसा मिलूंगा कि आज तक किसी से नहीं मिला मैं, कब मिलोगे, कि जब मैं नंद जी के यहाँ आ जाऊ ना तब मिलूंगा। तो ये गोपियां कौन थी, वेद के मंत्र थे, वेद की ऋचाएं थी, वो वेद की ऋचाएं गोपियां बनकर के आई। अब इनके मन में आ रहे नंद जी का छोकरा हो गया और हमको देखो भगवान ने क्या कहा था। अब वे दौड़ी 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 आई और अपना खूब श्रृंगार किए। आज उन्होंने खूब श्रृंगार किया है और जाकर के और वे नंद जी के घर पर पहुंचती है और ऐसे दौड़ी दौड़ी जा रही कि उनके जो आभूषण है वो टकरा रहे हैं आपस में और आभूषण गिर रहे हैं, परंतु गिरते हुए वे आभूषण जो है किसी प्रकार से किसी को ध्यान भी नहीं है और सब आशीर्वाद दे रही है, चिरम पाही, तुम चिरंजीवी बनो, तुम चिरंजीवी बनो, तुम चिरंजीवी बनो। वहां पर खूब वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, धुंधबियां बज रही है, गोप लोग परस्पर में बड़े आनंदित हो रहे हैं और नंद जी महाराज उस समय में बड़े महामनस्वी उदार भाव से सब लोगों को वस्त्र वगैरह दे रहे हैं। क्यों, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। देखो अभी नंद जी को ये पता नहीं कि मेरे यहाँ साक्षात विष्णु है, ये भी एक भक्ति है, ये भी एक भक्ति का मार्ग है कि साधक को पता ही न चले। आइए भगवान की कृपा होती है ताकि उस भक्त की भक्ति में स्वाभाविकता बनी रहे। तो हमारे नंद बाबा को दो बातों की इच्छा है, एक तो भगवान की आराधना हो जाए, एक मेरे छोटा सा बेटा है इस बेटे का अभ्युदय हो जाए। रोहिणी भी काम में लगी हुई है और जब से नंद बाबा यहाँ, जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए हैं, तब से भगवान की सहसरी जो रमा है लक्ष्मी जी है वो भी व्रज में अव्यक्त रूप से आई हैं और अव्यक्त रूप से आकर के सारे ब्रज में तरह तरह के आनंद की अटखेलिया कर रही है। ऐसा ब्रज में आनंद का अनुभव हुआ, उस आनंद का अनुभव अपने लोग भी इस छोटे से पंडाल में, और इसका नाम भी गोकुल धाम है वहीं। तो अपने यहाँ तो साक्षात ही अपने हृदय के भगवान को देखते रहो और उनकी लीलाओं के लिए आज ये आप बड़े विशेष उल्लास के साथ नंद उत्सव मनाओ। ये नंद उत्सव आपके हृदय का आनंद उत्सव है, ये किसी और नंद का नहीं, आपके स्वयं के आनंद का उत्सव है। बोलिए आनंद कंद भगवान की
जय।
बस अब आपका ही समय है, आपका समय खूब बढ़िया कीजिए। फतेह कृष्ण जी, वृंदावन की रास लीलाओं में सुना एक नंबर की रास लीला है।
श्री वसुदेव नंदन की
जय।
वसुदेव जी महाराज लेकर के आ रहे हैं।
इधर से इधर से
भादों कारी,
इधर से रस्ता नहीं है क्या?
पावन भादों कारी निश्चय से पावन आखे बुध रोहणी अखिल नागपति जन सुखदायक आय की जन्म लियो सुरनायक पादुकावन आते बुध रोहणी सुहावन
अतल सुतल पाताल धुन छाई चहुओर भैया अतल सुतल पाताल धुन छाई चहुओर श्री कृष्ण जन्म नगराई घर नाच उठे ब्रज मोरे श्री कृष्ण जन्म आनंदराई घर नाच उठे ब्रज मोरे
वसुदेव नंदन रहे, अब यशोदा नंदन होने जा रहे हैं, क्योंकि श्री लाल जी पहुंच रहे हैं श्री महाराज जी के पास में। जिस समय महाराज जी बैठे हैं नंदराय जी के स्थान पर, तो नंद बाबा के स्थान पर हम महाराज जी को समझ करके श्रीमद् भागवताचार्य प्रभु को
हरि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर ढोटा जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार ढोटा जायो है नंद घर ढोटा जायो है ढोटा नदी भरी
गाँव में
बाल बाल सब मिल जुल गाँव
की खुशी हम सब ने मनाई और घर बैठे गंगा
आई है,
बधाई है,
बधाई हो
भैया नंद के पुत्र भाया।
भयो यूं आनंद आनी अचानक बात सुनाई, फूल उठे रस भूल सवे सो उमंगन अंग समारी भुलाई, नागरी मंगल मादक की नर नारिन के मन में छक छाई, लाई चले रट एक कही एक बधाई बधाई बधाई
बधाई।
बनाइए बनाइए भैया समस्त ब्रज मंडल में, अरे सभी ब्रजवासी गोप गोपी अपनी सब कछु दिनचर्या भूल करके एकमात्र नंद के लाला के आनंद रस में घोर होते भये, अपने और अपने पराए या बात को कोई ज्ञान ध्यान ही नहीं रह गए हो। अरे भैया
कहाँ हो भैया,
भूल रहे गोप गए गोप कान भूल रहे, हुलसी मचाई माते प्रेम सरसाई में, दूध दल ग्रत कीच मछली गैल गैलन में, कीचन दे सवै पड़े आनंद बधाई में, छोटी सुट चोटी कछोटी काऊ की कट मोटी भई, और फैल गई थौन काऊ की बड़े मोद की अबाई में, राजी दिल मोदन विनोद बेहस नंद आज नाचे आनंद सोया लाला की बधाई
बधाई में
बधाई है बाबा।
और यूं कहो करें कि भैया दिन सहे कर तार दिन सुख सो तो कभी ने तरे नहीं तारे, उत्तम पौरुष कीने बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे, ये देव से सब आपस में विद के परपंच न जाते हैं तारे, बेटा भयो वसुदेव के धाम में और दुंदिवी बाजी नंद के द्वारे।
अरे वाह भैया वाह, देखे मैया यशोदा ने कैसो लाल जायो है,
कैसो लाल जायो भैया।
अरे ज्या लाला के दर्शन करवे कू ये ब्रज के बूढ़े बाल जवान सभी दौरे चली आ रहे हैं, गोप ग्वाल सखी देखियो भैया।
हाँ भैया,
ब्रजवासी तो कहा वह देवताऊ या लाला के दर्शन को आ रहे हैं,
कैसे आ रहे हैं
कैसो लाल जायो है, पूत सपूत जन्यो दसुदा, पूत सपूत जन्यो दसुदा, इतनी सुन के बसुदा सब दौरी, देवन मन आनंद भयो नित आवत धावत मंगल गौरी, नंद नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी, मोई देखत ही ब्रज लुटाए दियो न बची बछिया छचिया ना पिछोरी।
और भैया,
हाँ भैया,
ये सब ब्रज गोपी और ग्वाल वाल ये सब लाला की खुशी में और बधाई में कहाँ बन गए भैया, बर्फी सी ब्रजनार बनी, बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, बर्फी ब्रज गोपी बन गई, जो गीत गा रही है वो गुंजिया बन गई और ग्वाल वाल गुंजा बन गई।
और कहाँ बन गए भैया,
भैया पेड़ा से प्यारे भय बलदेव जी,
अच्छा
जो हमारे बलराम दादा हैं वो पेड़ा बन गए, पेड़ा से प्यारे भय बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, जो हमारी रोहिणी मैया है वो रस खीर बन गए।
केसर गरिमा
भैया भी मीठो है वो,
कछु
नमकीन को पुटान दो,
हाँ भैया लवड़ बिना भो बंजन ठीके,
सुन ले भैया नंद महीप भय नमकीन, जो हमारे बाबा बैठे
बाबा
वो नमकीन है गे,
भैया
नंद महीप भय नमकीन, गोकुल गोप भय गरम मसाला, जायो है श्याम जलेबी यशोदा ने या रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो
लाला। अरे भैया ये बधाई यही नहीं है रही, तीनों लोकन में मच रही है। बजट बधाई ध्वनि छाई तीनों लोकन में, देख के मगन भई मूरत रसाल की। आज यशोदा ने बधाई दीनी, मोतीन के थार भर साल और दीनी, तुसाला दीनी साड़ी रंग लाल की। ये प्रेमी कहे दद कादों की कीत मच रही आज आंगन में। ये गोपी सब नाच रही दे दे कर ताल की, चिर जीवो कोट वर्ष तुम्हारो ये सुत। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
ओ भैया,
ओ भैया देख।
हाँ भैया बोल।
देख किया भाई, कह रहो कि मैया ने थार भर भर के मोती पन्ना हीरा जवाहरात दिए।
अच्छा भैया,
सारे अरे ऐसी चीज दही तो कहाँ ला भयो। अरे सारे हमको तो ऐसो उपहार दिए कि जाते पेट चीकनो होए और मुंह मीठो होए।
ऐसा कोई उपहार है?
हाँ हाँ है, क्यों नहीं
तो बता।
हम तो बाबा से यही मांगेंगे भैया।
हाँ,
पीड़ान की नीम भर पर भी की भीत धर, और रबड़ी की गाने सो धर की चिनाए दे। पूड़िन को बिछैया,
पूड़िन को बिछैया, अरे वाह भैया।
अरे पूड़िन को बिछैया मोहन भोग को गलीचा, खजरा फेनन की किवारता में लोग इलायची जड़ाए
जड़ाए दे क्या।
और भैया ये तो भयो किलो, और किले की रक्षा की ताई धरी जाए
तोप काय की।
हाँ तो तोप काय की चाहिए, सारे कोई मारनो थोनी है जो तोप बनवानी है।
अच्छा तो कैसी चाहिए
तोप? वो ऐसी हो कि जाए खाए थे मोह मीठो है जाए।
अच्छा भैया बताइए।
तो भैया मिस्त्री की तोप जामे बूरे की बारूद भर,
बारूद भी बूरे की,
और गोल गोल लड्डू भर भर की चलाए दे। कहे मन सुख लाल तेरे साही भी अपार, एक ऐसो किलो बनाए, एक ऐसो किलो बनाए हम बालन को लुटाए।
अरे वारे भैया, तेरे तो मेरे मन की बात कही है बिल्कुल।
और भैया देख।
हाँ,
अरे ये हमारा कन्हैया है ना, कितनो सुंदर लग रहे हो,
कितना सुंदर लग रहे हो।
और देख या कन्हैया को अपने हृदय के भाव के झूला में झुलाओ तो बड़ो ही आनंद आवेगो। अच्छा। और भैया बामे ने झूठा ने धीरे धीरे लगाई।
अच्छा, कैसे भैया?
कन्हैया तो छोटो सो ही है ना।
कैसे भैया?
अरे मेरो लाला झूले पलना निक होली झूठा दीजो,
अबे लाला झूले पलना निक होली झूठा दीजो।
Baby,
पलना काय को बनो है
काय को बनो भैया
खुंदना काय की लगे
काय के लगे तुम ही बताओ भैया
भैया
तू ही बता दे भैया
अरे भैया सुन
सुना
को रतन जटित को बनो
पालनो रतन जटित को बनो पालनो रतन जटित को बनो पालनो
और भैया
हाँ भैया
रेशम की पूरी तम के लागे फोदना एक होली दुकानी जो
अरे सर के लागे फोदना
जन्म भयो
अच्छा
भैया बाबा नंद ने वह 90 वर्ष की अवस्था में वह लाला को उत्पन्न कर दियो ये तो आश्चर्य की बात है
आश्चर्य की बात तो है
पर एक बात और हूँ आश्चर्य की है
वो कौन सी बात है भैया
भैया ये गोरी नंद यशोदा गोरी
गोरी नंद यशोदा गोरी
गोरी नंद यशोदा गोरी
Yeah.
भयो
जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद
भयो जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की
हाथी ने घोड़ा लीने
और दीनी पालकी
हाथी ने घोड़ा लीने
और दीनी पालकी
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया
लाल की नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो
पालकी इंद्राणी रुद्राणी ब्रह्माणी आदि रहे मंगल के गीत गाने बनी है रसाल की नर अरु नारी नगर कितने बोरे से फिरे आरती उतारे ले नवीन नदलाल की गोकुल को चंद भयो भक्तन सुख कंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
बधाई हो बधाई जोधपुर वासियों को ठाकुर जी के जन्म की बधाई हो लाला के जन्म की
बधाई हो
बोलिए आनंद कंद भगवान की लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई
लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई
लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई
लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई
दे दो बधाई मैया दे दो बधाई
ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई
लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई
लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई
लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई
की आरती राम गोपाल दास जी।
सती बाल कृष्ण कीजे
आरती बाल कृष्ण कीजे
अपनो जन्म सफल कर लीजे
अपनो जन्म सफल कर लीजे
श्री यशोदा को परम दुलारो
श्री यशोदा को परम दुलारो
बाबा की अखियन को तारो
बाबा की अखियन को तारो
गोपियन को प्राणन से प्यारो
गोपियन को प्राणन से प्यारो
इन पर प्राण छावर कीजे
इन पर प्राण छावर कीजे
आरती बाल कृष्ण कीजे
आरती बाल कृष्ण कीजे
अपनो जन्म सफल कर लीजे
अपनो जन्म सफल कर लीजे
बलदाऊ को छोटो भैया
बलदाऊ को छोटो भैया
बनवात है करी बोलत मैया
कनुआ कह करी बोलत मैया
परम मुदित मना लेत बलैया
परम मुदित मना लेत बलैया
अपनो सरबत इनको दीजे
अपनो सरबत इनको दीजे
आरती बाल कृष्ण कीजे
आरती बाल कृष्ण जी कीजे
अपनो जन्म सुफल कर दीजे
अपनो जन्म सुफल कर दीजे
श्री राधावर सुगर थनैया
राधावर सुगर थनैया
ब्रज जन को नव
लेत सवैया ब्रज जन को नव लेत सवैया
देखत ही मन नयन सुरैया यह छवि नयन में भर दीजे
यह छवि नयन में भर दीजे
आरती बाल कृष्ण कीजे अपनो जन्म सुफल कर दीजे
अपनो जन्म सुफल कर
तो तरी बोलन मधुर सुहावै
तो तरी बोलन मधुर सुहावै
सखन मजके लत सुख पावै
सखन मजके खेलत सुख पाई
सोही सुकृति जो बिन को ध्यावई
सोही सुकृति जो बिन को ध्यावई
बिन को अपनो कर लीजे
बिन को अपनो कर लीजे
आरती बाल कृष्ण की जय
आरती बाल कृष्ण की जय
अपनो जन्म सुफल कर लीजे
अपनो जन्म सुफल कर लीजे
आरती बाल कृष्ण जी की जय
पुरखाय विद्महे नंदनंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि तुलसी बाल कृष्ण लाल की जय।
इस प्रकार से ब्रज में नंद जी के यहाँ बड़ा आनंद का उत्सव हुआ और ये सभी के आनंद के लिए था। सारे ब्रजवासी सारे गोकुलवासी एक साथ आनंदित हो गए। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज एकदम कथा को मोड़ देते हैं। ये यह कथा क्यों दी कैसे कही गहराई में जाने से ही पता चला, पता नहीं चलता यहाँ कथा आगे क्यों कही। क्या कथा है कि नंद जी एक बार मथुरा में गए वार्षिक कर जमा कराने के लिए। वहां उनको वसुदेव जी मिल गए तो वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद जी, आपके तो बहुत बड़ी उम्र के बाद बच्चा हुआ है, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में बच्चे की बड़ी इच्छा थी, उस कामना से आप निवृत्त तो हो गए, इसलिए आपको बड़ा आनंद का अनुभव हुआ है। और प्रेमी लोगों का आपस में मिलना होता है, यह भी कोई भगवान की विशेष कृपा होती तो होता है। और सब आपके ब्रज में कुशल मंगल है। देखो, मनुष्य को कभी भी धर्म अर्थ और काम के लिए कष्ट नहीं पाना चाहिए, सब काम को यथाशक्ति करना चाहिए। नंद बाबा क्या बोलते हैं? अजी वसुदेव जी क्या बताए, आपके तो छह बेटा कंस ने मार दिए, एक कन्या हुई वो भी स्वर्ग में चली गई, आपका आपकी गोद तो खाली की खाली रही। ये सब प्रारब्ध का खेल है। इस बात को जो समझता है वो मोहित नहीं होता। देखो इनका ये आपस में संवाद हुआ ना, इसका अर्थ क्या निकलता है कि वसुदेव जी को नंद जी के आनंद से आनंद है और नंद जी को वसुदेव जी की तकलीफ में तकलीफ है। वसुदेव जी अपने दुख को नंद के आनंद में भूल गए और नंद जी अपने आनंद को वसुदेव जी के दुख में भूल गए। तो जो आदमी अपने सुख को दूसरे के दुख देखने पर भूल करके उसकी सेवा करता है, उसके घर में भगवान रहते हैं। और जो वसुदेव जी अपने दुख को भुलाकर दूसरे के सुख में सुखी हो गए, उनके घर भगवान रहते हैं। तो वसुदेव और नंद जी के यहाँ ही भगवान रहे, क्योंकि दोनों का हृदय कितना विशाल है। अपने दुख में तो सभी दुखी होते हैं और अपने सुख में भी सभी सुखी होते हैं। पर आज जो है ये अपना सुख और अपना दुख नहीं था, ये दूसरे का सुख दुख था। इसलिए भगवान वसुदेव और देवकी के और इधर नंद बाबा और यशोदा जी के आ रहे। वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी आपने कर जमा करा दिया, मुझे ऐसा लगता है आपके ब्रज में बड़ा उत्पात होने वाला है, जल्दी जाइए यहाँ, ज्यादा मत ठहरिए। नंद जी ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास किया और वसुदेव जी महाराज के कहने से नंद जी जल्दी जल्दी व्रज की ओर चल पड़े। मार्ग में विचार कर रहे हैं, देखो वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे मन में भी ऐसी शंका हो रही है कहीं कोई ब्रज में उत्पात तो नहीं हो गया है, यदि कोई उत्पात है तो मैं भगवान की शरण स्वीकार करता हूँ। ऐसे वो मन ही मन में भगवान की शरण में गए और सच पूछा जाए तो परीक्षित वहां उत्पात हो ही गया था। ध्यान से सुनना हो, ये भगवान की अवतार लेते ही सबसे पहली लीला है। आप ये मत समझना कि ध्यान से सुनना ये इनका तकिया कलाम शब्द है। ध्यान से सुनना जो है ये कथा की गहराई में पहुंचना है, थोड़ा गहराई में, कि कंस ने पूतना को ब्रज में भेजा, पूतना ने बहुत से बच्चों को मारा और जब जहां कोई बालोत्सव होता, जन्मोत्सव होता तो पूतना को पता चली जाता और वहां वो पहुंच जाती, तो वो पूतना अब नंद जी के घर पर पहुंची। बहुत सुंदर रूप बनाया उसने, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए, और राक्षसों का स्वरूप तो कुरूप होता है, उसने अपना सुंदर स्वरूप बना लिया, क्योंकि राक्षस राक्षसियां अपने स्वरूप को बनाने में बड़ी समर्थ होती है। बहुत सुंदर रूप बना करके और वो नंद जी के घर पर पहुंची, हाथ में कमल का फूल ले लिया, फूल लिए हुए आई तो उस समय वहां गोपियों ने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री, अरे सुंदर स्त्री का नाम लेती हो सखी, ये तो साक्षात लक्ष्मी जी आई है, बैकुंठ से आई है। उनको पता चला कि नंद के यहाँ एक छोकरा, बहुत ही सुंदर छोकरा हुआ है, तो अखिल सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी के मन में आया कि ऐसा क्या सुंदर हो सकता है, चलो मैं भी देखूं। तो इस लाला की सुंदरता को देखने के लिए आई है, चलो यहां से चलो। तो वो पलने के अंदर ललना सो रहा था और गोपियां उसको झूला दे रही थी, कोई उस बच्चे को गोद में ले रही थी, कोई बच्चे को चूम रही थी, कोई बच्चे का प्यार कर रही थी, सबने छोड़ दिया और सब वहां से रवाना हो गई। अब केवल कृष्ण और पूतना दो ही बचे। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पूतना की ओर देखा, देखते ही भगवान ने आंख बंद कर ली। ये आंख बंद क्यों की है? भगवान कहते हैं, ये पूतने तू मुझे मारने के लिए आई है, मैं तेरा ये कुभाव नहीं देखूंगा, ये तेरा खराब भाव ही तो है, इस खराब भाव को मैं नहीं देखूंगा, तू मेरे पास आई है केवल इसको देखूंगा। देखो ये प्रसंग ऐसा विलक्षण है पूतना का, सुखदेव जी महाराज इसी पूतना के प्रसंग में भागवत सुनने के लिए आए थे। वो जब बच्चे गा रहे थे तो जब पूतना का प्रसंग गाने लगे कि देखो मारने के लिए आई थी वो पूतना, उसको भगवान ने वैकुंठ पद दे दिया। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर संसार में हम किसकी शरण ले रहे हैं? वो पूतना का प्रसंग है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान कहने लगे, देखो पूतना मेरा स्वभाव, ध्यान से सुनना, मेरा स्वभाव किसी के दोष देखने का नहीं है, किसी के अवगुण देखने का नहीं है, मेरी आंखें किसी का पाप देखने के लिए नहीं है, ऐसा करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और तेरे अंदर जो ये भावना आई कि मैं बच्चे के पास जाऊं, नंद जी के बच्चे के पास जाऊं, बस ये भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, तो इस भाव को मैं नेत्र बंद करके तेरा पी रहा हूं। ऐसे भगवान नेत्र बंद करके और यूं प्रसन्न मुख से अपने पलना के अंदर झूलने लगे। अब उसको क्या पता था कि कौन है कौन नहीं है। अनंत भगवान को उसने गोद में उठा लिया। देखो भगवान ने यहां ऐश्वर्य नहीं दिखाया, भगवान यहां माधुर्य लीला कर रहे हैं। माधुर्य में ऐश्वर्य कैसा होता है भाई, कोई नाराज नहीं होना। माधुर्य में जो ऐश्वर्य होता है वो बढ़िया कोई अच्छा हलवा हो और उसमें थोड़ा सा कोई नमक मिला दे, बेस्वादा होता है। ऐसे ही भगवान अपने माधुर्य में पूर्ण माधुर्य रखते हैं, उस माधुर्य में ऐश्वर्य को नहीं मिलाते, पर ऐश्वर्य में माधुर्य का स्वाद जरूर दे देते हैं, पर पूर्ण माधुर्य में ऐश्वर्य नहीं मिलाते। यदि ऐश्वर्य मिला देंगे तो माधुर्य का अपना एक अलग ही रस है, जो रस भगवान को भी मिलता है और भक्त को भी मिलता है। देखो ऐश्वर्य का जो रस है वो भक्त को मिलता है, भगवान को नहीं मिलता है, और माधुर्य का रस भगवान को भी मिलता है और भक्त को भी मिलता है। बड़े रहस्य की बातें हैं। इसलिए भगवान ने जब उसको उसको मौका मिल गया पूतना को, तो उसने पलने में से उसको उठाया और वो गोद में चले गए भगवान। अरे अनंत भगवान है, इनको कोई उठा नहीं सकता है, पर भगवान ने अपना ऐश्वर्य छोड़ा और उसकी गोद में चले गए। और पूतना की समझ क्या हुई, पूतना समझने लगी कि जैसे कोई सांप को डोरी समझ ले, कोई सांप और उसको डोरी समझ करके उसको उठा ले, ऐसे उठा लिया। ये देखो ज्ञान योग की दृष्टि से बिल्कुल उल्टा दृष्टांत दिया है। आपने बहुत सुना होगा, भागवत में भी सुना और जगह भी सुना, कि मनुष्य है वो सांप को सांप की जगह सर्प समझता है, ऐसे ही संसार भगवान की जगह संसार समझता है, ब्रह्म की जगह संसार की प्रतीति होती है, जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है। लेकिन यहां उल्टी बात है, यहां सांप में रज्जु की भ्रांति हो रही है, सांप में रज्जु की भ्रांति, अर्थात सांप बहुत कुछ है, डोरी कुछ भी नहीं है, परंतु भगवान यहां सब कुछ है, उसको डोरी जैसे मालूम दिए पूतना को, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और उसने अपने गोद में कृष्ण को लेकर चारों तरफ यूं देखा, देखे मुझे कोई देखता तो नहीं है। देखो ये गुप्त भक्ति है, गुप्त भक्ति। भगवान भी देख लिया कि ठीक है, कोई ये चाहती है कि कोई मुझे ना देखे तो मैं भी क्यों देखूं। और जब देखा कि कोई यहां नहीं है, तब उसने अपने स्तन पर जो एक हलाल जहर लगाया था वो जहर उसके मुंह में दे दिया, भगवान के मुख में दिया। अब भगवान के तो भाई जहर पीने की आदत नहीं, भगवान ने कभी जहर खाया नहीं, भगवान ने तो अमृत ही अमृत पिलाया है, भगवान अमृत में ही रहते हैं, जहर का और भगवान का कोई संबंध नहीं। आज उनको जहर लगाया उसने पूतना ने, और अपना जहर लगाया हुआ स्तन उनके मुख में दिया, तो भगवान ने उस स्तन को प्रगाढ़ भाव से पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, और उसका जहर पीने लगे। परंतु कैसे पीने लगे हो कि रोष समन्वितो पिबत, रोष, देखो रोष का अर्थ होता है क्रोध, और क्रोध का अर्थ होता है रुद्र, रुद्र का अर्थ होता है भगवान शंकर, उन्होंने भगवान शंकर का स्मरण किया, शंकर जी आइए आइए आइए, आपने जो हलाल जहर पिया था उसकी एक बूंद यहाँ बच गई, उसमें से कुछ अंश आपको और जहर पीने को मिलेगा मेरे पास, आओ तो सही आओ तो सही आओ तो सही, देखो इस पूतना का जहर जहर भाग आप पी लो और इस पूतना में छिपी हुई जो भक्ति है उस भक्ति को मैं पी लेता हूँ। तो भगवान शंकर आए भगवान कृष्ण के अंदर ही और जहर का तो वे पान करने लगे और उसके प्रेम का पान भगवान कृष्ण करने लगे। अब वो जब उसका जहर खींचा जाने लगा और उसके प्राण भगवान लेने लगे तब पूतना अपने असली रूप में आ गई। असली रूप में आकर के पूतना मुंच मुंच छोड़ो 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 ऐसे करके जोर से चिल्लाने लगी। भगवान कहते हैं बस बस ये एक काम मैं नहीं कर सकता और सब कर सकता हूँ, यहाँ आकर मैं विवश हूँ, एक बार कोई मेरे पास आ जाता है मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, बस एक बार मेरे पास आ जाए बस, कैसे ही आ जाए, कितना ही कुटिल हो कितना ही कुत्सित कर्मा हो कितना ही दुराचारी हो कदाचारी हो पापाचारी हो, एक बार येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से मेरे पास आ जाए मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, ये मेरी असमर्थता मान लो चाहे तुम कुछ भी मान लो संज्ञा कुछ भी हो लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता। सामुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी चिल्लाती रही छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भगवान ने नहीं छोड़ा और वो मकान के पिछले दरवाजे जैसे और पीछे जाकर के बहुत विशाल एक बाड़ा था उस बाड़े में गई और वहां जाकर के वो धड़ाम से गिर गई, भगवान ने प्राण पी लिए। पूतना अपने उस रूप में रह सकती थी, पूतना ने अपना स्वरूप छिपाया था उसमें रह सकती थी, लेकिन भगवत सकाशात भगवान का जब सानिध्य होता है तो वहां उसको असली रूप में आना ही पड़ता है, इसलिए वो अपने राक्षसी रूप में आई। इतना विशाल देह था उसका, 12 कोस में फैल गया उसका शरीर 12 कोस में। अब जो है उसके शरीर को देखे जाकर के तो कैसे लगे कि उसका जो ये दांत है वो तो हल के समान लगे, वो हल जिससे खेती करते हैं वो हल के समान दांत लगे, और नाक की गुफाएं नाक के छिद्र है ये नासिका के छिद्र उसको पर्वत की गुफाओं के समान मालूम दिए, और उसके छाती पर जो स्तन थे वे बड़े बड़े पर्वत के समान पर्वत शिखर के समान मालूम दिए, और आंखें थी वो कुएं के समान गहरी दिखाई दी, हाथ और पैर ऐसे पड़े थे जैसे कोई नदी के ऊपर बहुत बड़े पुल पड़े हुए हो, पुल हाथ पैर पुल के समान थे, और वहां देखो छाती पर कृष्ण खेल रहा था। ध्यान देना इतने बड़े सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए कोई नहीं आया कृष्ण के पास, मरी हुई पूतना से सब डर रहे थे, लेकिन गोपियों को पता चला कि अरे अरे एक राक्षसी उसके छाती पर एक हमारा ये यशोदा जी का लाला खेल रहा है, लाला बैठा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि राक्षसी है पास में जाएंगे खा जाएगी जिंदी है कि मरती है, कुछ नहीं विचार किया सीधे वे चढ़ गई पूतना के शरीर पर जाकर के चढ़ गई और कृष्ण को उठा ले आई। देखो ये केवल गोपियों का साहस था, किसी पुरुष का साहस नहीं था, कितना गोपियों का प्रारंभ से भगवान के साथ एक अपनापन था भाई। उसको लेकर के वे आई और उस बालक को लेकर बड़ा प्यार करने लगी, छाती से लगाया उसको चूमा और के भाई बड़ी विबल हो गई, अरे तू अभी मर जाता, अरे कन्हैया तू अभी ऐसा हो जाता, ऐसे करके रोने लग गई। यशोदा जी ने रोहिणी जी ने दोनों ने उसकी रक्षा की बालक की भगवान का नाम ले ले करके, और गायों के खुर की जो मिट्टी है उस मिट्टी से और गोबर और गोमूत्र से उस छोटे से बच्चे को उन्होंने स्नान करवाया। भगवान का नाम लेते हुए कहने लगे कि आज भगवान इनके चरणों की रक्षा करें, और हयग्रीव भगवान इसके पेट की रक्षा करे, ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करे, योगेश्वर भगवान इसके मन की रक्षा करे, श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान इसके चित्त की रक्षा करें, प्रश्न गर्भ भगवान बुद्धि की रक्षा करें, खाते हुए की यज्ञ भूख भगवान रक्षा करें, माने सारे संसार की रक्षा करने वाले भगवान, और भगवान की रक्षा करने वाला है भगवान का नाम। नामक ग्रहण भीरव है। ऐसे गोपियों का जो प्रेम देखा, फिर माताओं ने उनको दूध पिलाया, बच्चे को दूध पिलाया, और माताओं के स्नेह के कारण से आंखों से आंसू भी आ रहा, हमारा बच्चा बच गया। वहां झुंड के झुंड ब्रजवासी इकट्ठे हुए हुए थे, इतने में ही नंद आदि गोप थे वो मथुरा से आ गए। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या बात है, ये भीड़ किस बात की है? अरे भले आए नंद जी, भले आए, आप तो जाने जाकर के मथुरा में बैठ गए, और ये इधर पीछे से एक राक्षसी आई, और ये कृष्ण को लेकर कन्हैया को लेकर जा रही थी, इतने में ये मर गई, तो बड़ा अच्छा हुआ कन्हैया बच गया, नहीं तो आज कन्हैया तो ये मर ही जाता। उस समय उन्होंने नेत्र बंद करके वसुदेव जी का ध्यान किया। वसुदेव जी, आपने मुझे बहुत पहले ही बात बता दी थी, इस प्रकार से आपके वहां पर अनर्थ हो सकता है, अब उसका दाह संस्कार करें तो भाई इतना बड़ा शरीर कैसे लकड़ी लाए, कैसे प्रबंध करें? तो वो 12 कोस में फैला हुआ था, तो उसके अंगों को परसों से काटा गया, काट काट करके, और चिताएं बना बना, कितनी चिताएं बनी, वो चिताएं बना बना करके उसमें उनके शरीर को जलाया गया। क्या बताएं परीक्षित, ऐसी सुंदर सुगंध आ रही थी, मुर्दे के शरीर में दुर्गंध आया करती है, जलाते हैं तब एक अलग ही गंध आती है, परंतु आज उस पूतना को जलाया तो बहुत सुगंध आ रही थी। दह्य मानस्य देहस्य धूमश्चागरु सौरभ है, जैसे अगुरु जल रहा हो, ऐसी सुगंध आ रही थी। क्यों नहीं होगा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श के कारण से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और देह में दिव्यता आ गई। देखो यहाँ पूतना की इतनी भक्ति नहीं है जितनी भगवान की इस पर कृपा की, यहाँ पर विशेष बात देखी जा सकती है। पूतना ने कोई भक्ति की नहीं, पूतना तो केवल गई कृष्ण के पास, वो भी भगवान समझ के नहीं गई, और वो भी एक नौकरी पैसे वाली थी, कंस के वहां पर उसको तनख्वाह मिलती थी, और कंस ने आज्ञा दी कि जाओ छोटे छोटे बच्चों को मारो, तो वो अपना पेट भरने के लिए, कंस की आज्ञा पालन करने के लिए अनजाने में कृष्ण के पास चली गई, अनजाने में। लेकिन भगवान ने तो अपने पास आते देखा बस, और अब भगवान ने जो अपनी कृपा की वर्षा की, ऐसी कृपा की वर्षा की पूतना पर कि उसके शरीर के अंदर इतना सुगंध हुआ। अब विचार करो कि जब पूतना के अंदर इतनी पवित्रता आई है, भगवान ने जिन माताओं का दूध पिया है उन माताओं के अंदर कितनी पवित्रता आई होगी, उसका हम वर्णन कर नहीं सकते हैं। या तो धान्य पिसा स्वर्गम अवाप जननी गति, वो राक्षसी भी उस गति को प्राप्त हुई जिस गति में यशोदा जी का स्थान सुरक्षित है। ओहो, बेटा मान करके वसुदेव वगैरह, देवकी वगैरह, नंद वगैरह, यशोदा वगैरह इतना प्रेम करते हैं, तो क्या देते हैं भगवान? केवल्या अखिल प्रदय, केवल्यादि अखिल प्रदय, कैवल्य मुक्ति आदि सब कुछ दे सकते हैं। अब कोई भगवान से पूछ सकता है कि महाराज आप हमको मुक्ति देते हो, मुक्ति तो आपने पूतना को ही दे दी, पूछ लिया भगवान से, ब्रह्मा जी ने ही पूछ लिया कि महाराज आप अपने प्रेमी लोगों के लिए क्या देंगे, आपके पास में कोई देने के लिए है नहीं। देखो प्रेम के सामने भगवान के हाथ नकार देते हैं, कुछ नहीं मेरे पास देने के लिए, कुछ नहीं है। प्रेम इतनी ऊंची चीज है, और वो प्रेम हमारे द्वारा मनुष्य के द्वारा दिया हुआ होता है उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। हम तो उल्टा भगवान से संसार की चीज मांगते हैं तो वही भगवान को भी विचार आता है कि अरे मुझे प्रेम देने वाला प्राणी और मुझसे भी मांगता है और वो भी नाशवान चीज मांगता है। पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, स्वस्थता मिल जाए, मेरी विजय हो जाए, मेरी बात रह जाए। भगवान देखते अरे मुझे देने वाला मुझसे मांगता है, देखो भगवान को बहुत बुरा लगता है। ऐसी ऐसी बहुत सी कथाएं हैं परीक्षित। हम तो ये जानते हैं कि भगवान ने न जाने कितनों का ऐसा उद्धार किया होगा। नंद जी तो उस बालक को लेकर के इतने आनंद में डूबे, बेटा तू हमारे कारण से बच गया, हमारा ही कोई भाग्य था। उसको वो बार बार चूमे, उसके मस्तक को सूंघे और परमाम मुदम ले भे, बहुत उनको आनंद की अनुभूति हुई नंद जी महाराज को। इतना आनंद तो पहले नहीं हुआ जितना पूतना से मुक्त होकर के कृष्ण का आनंद लिया। कारण क्या है उनको पता नहीं है, परंतु पूतना ने नहीं, परंतु भगवान ने पूतना का उद्धार किया ना, तो उनकी ऐसी कृपा टपकती गई, माधुरी उनमें और प्रकट हो गया भगवान में। उस माधुरी का आस्वादन भगवान तो करते नहीं, अब वो माधुरी का आस्वादन हमारे नंद जी और यशोदा जी और ब्रजवासी कर रहे थे। ये पूतना की मुक्ति का जो प्रसंग सुनता है श्रद्धा पूर्वक, उसकी भगवान कृष्ण में अपार रति होती है, प्रेम होता है और भगवान की कृपा में वो डूबा रहता है। राजा ने कहा महाराज ऐसी लीलाएं और आने दीजिए। भगवान की ऐसी कथा सुनते हैं तो सुनते ही अंतःकरण निर्मल होता है। देखो भगवान की कथा होती है ना तो लगता है और सुने और सुने। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपका अंतःकरण निर्मल होता चला गया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। राम जी का चरित्र सुनते हुए जो अघा जाते हैं, अब ठीक है बहुत सुन लिया, बहुत नंदोत्सव हो गया, बहुत कथाएं सुन ली, क्या सुनना है कि रस विशेष जाना तिन नाही। इसलिए महाराज हमारा अंतःकरण भगवान की कथा सुनने मात्र से शांति मिलती है। और भक्तिर हरौ तत्पुरुषेच सख्यम, भगवान में और भक्तों में हमारी भक्ति मने, ऐसी कोई और हमारे लिए लीला सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार करवट करवट बदलने का उत्सव था। छोटा बच्चा करवट बदलता है, सीधा ही सीधा सोया रहे तो ये खोपड़ी पिचक जाएगी, थोड़ा इधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए। उसका एक उत्सव मनाया गया, सब लोग इकट्ठे हुए। अब उत्सव में लोग आए घर में बहुत से, अब बच्चे का क्या करें? ध्यान देना बेचारे यशोदा जी वगैरह को पता नहीं, उन्होंने कृष्ण को एक झोली में लेकर के और एक छकड़े के नीचे उसको टांग दिया और खुद अपने काम में लग गए। भगवान वाकू रोने लगे जोर जोर से। भगवान के रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। भगवान रोए क्यों? भगवान रोने लगे कि अरे आप उत्सव मनाओ और मुझे अलग करो, मुझे अलग करके और आप उत्सव मनाते हो, मैं तो अपने जीवन का उत्सव मनाने के लिए आपके पास आया। वसुदेव जी से भी छूट करके आपके पास आया और आपने मुझे अलग कर दिया और आप उत्सव मनाते हो, देखता हूं कैसे मनाते हो। तो भगवान उस झोली में यूं पैर जो है चंचलता से ऐसे करते करते जोर से उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई। ये देखो छिपा हुआ ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य ऐसा छिपा हुआ है कि ऐश्वर्य से घटना तो कर दी पर ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। भगवान ने चरणों से छकड़े को उलट दिया और वो छकड़ा भरा हुआ था गोरस से, मक्खन से, दही से, छाछ से, दूध से, गोरस से भरा हुआ, और बड़े बड़े मटके, छोटे छोटे भी नहीं, बड़े लंबे लंबे मटके वो भरे हुए। और वो अभी ब्रज से मथुरा में जाने ही वाले थे तो भगवान ने उनको यूं उलट दिया उस छकड़े को। तो छकड़े में जब इतना बड़ा सामान है वो आपस में टकराए और आवाज हुई तो सबका ध्यान बटा, सब एक साथ दौड़े दौड़े आए। अरे छकड़ा किसने उलट दिया रे? तो यशोदा जी, अरे छकड़ा तो उल्टा मेरा बच्चा देखो, ये जो झोली में यूं लटक रहा है, बच गया रे, तो ये उलट जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। बच्चे को जाकर के यशोदा जी ने अपने गोद में ले लिया। भगवान हंस रहे हैं, इतनी देर तो रो रहे थे। देखो भगवान रोते हैं क्यों? भक्त के बिना भगवान रोते हैं क्योंकि भक्त भी तो भगवान के बिना रोता है। जब तक भक्त है वो भगवान को अपनी भक्ति में रुला न दे तब तक भगवान उसकी भक्ति को बहुत बड़ा महत्व भी नहीं देते हैं। भगवान भी द्रवित हो जाए, रोने लग जाए, क्या भक्ति है, कैसी भक्ति का ये साधन है। तो फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया और उन लोगों को पता नहीं कि सब कुछ भगवान की लीला थी। तो छिपा हुआ ऐश्वर्य लेकिन माधुर्य को और प्रकट कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। और वहां पूछा लड़कों से जो खेल रहे थे, अरे छकड़ा कैसे उल्टा, कि इसके पैरों से उल्टा, कि ना 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 ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये देखो भगवान के ऐश्वर्य का प्रभाव भक्तों पर नहीं पड़ा क्योंकि भगवान ने माधुरी ही माधुरी फैला रखा है, ऐश्वर्य का प्रभाव पड़ने नहीं दिया। एक बार ये तृणावर्त था, बथुलिया बन करके आया और कृष्ण भगवान को उठा के ले गया। भगवान कृष्ण उसके साथ उड़ गए, चक्रवात आना बथुलिया चक्रवात, भगवान भी उसके साथ यूं चले गए। यशोदा जी ने उनको एक जगह लेटा रखा था, यशोदा जी को क्या पता कि ऐसा कोई आएगा राक्षस दैत्य, वो हवा का रूप बनाकर कृष्ण को ले गया। और उसी समय भगवान कृष्ण ऊपर जाकर जब बहुत ऊंचे चले गए तो वो अपने असली रूप में आया। असली रूप में आते ही भगवान ने उसका गला था यूं गला पकड़ लिया, उसका श्वास बंद कर दिया। जो तृणावर्त बथुलिया बन करके आया, हवा बन करके आया, उसकी हवा बंद कर दी भगवान ने, यहां गड़ा ये किया ऐश्वरी। लेकिन धड़ाम से वो गिर गया और भगवान उसकी छाती पर वैसे ही खेलते रहे। अरे रे देखो ये क्या हुआ, अहो बताद्वत उदमेश रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितो भ्यगात पुनः। ये देखो बालक फिर भी खेल रहा है, ये देखो ये जो है राक्षस कैसे मर गया, कि भाई अपने पाप से ही मर गया, इसको किसी ने मारा नहीं है, ये अपने पाप से मर गया। हिंसर स्वपापेन विहंसित खल, दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से अपने पाप से ही मर जाते, इनको मारने की अलग से जरूरत ही नहीं रही, ऐसी भगवान की लीला हुई। एक बार भगवान ने दूध पिया माता के, दूध पीने के बाद में अब देखो बच्चा जब हंसता है और फिर हंसते हंसते भगवान ने अपना मुंह जंभाई ली, उबासी ली, उस उबासी के अंदर यशोदा जी को समुद्र दिखाए, पर्वत दिखाए, सूर्य दिखाया, चंद्रमा दिखाए, अग्नियां दिखाई, द्वीप दिखाए, ऐसे दिखाए तो बोले वो एकदम विस्मिता हो गई, आश्चर्य मेरी इसके मुंह में क्या है, ये इसके मुंह में क्या है। ऐसा जब वो घबरा करके और विचार करने लगी तो भगवान ने देखा कि भाई इसके मन में विचार आ न जाए कि मैं कोई भगवान हूं, मेरी भगवत्ता इसको समझ में नहीं आनी चाहिए। तत्काल भगवान ने वो अपना माधुरी वापस प्रकट कर दिया, माधुरी के अंदर माता डूब गई। देखो ये विराट रूप है ना, ये भगवान कई बार दिखाएंगे माता यशोदा को। क्यों दिखाते हैं ये भगवान का ऐश्वर्य है। कभी कभी अत्यंत माधुरी में भगवान प्रकट करते हैं भक्त के लिए, परंतु भक्त है वो उस माधुरी को छोड़ करके कहीं ऐश्वर्य में न चला जाए। ये एक भगवान की एक परीक्षा ही समझिए, परीक्षा होती है, भगवान परीक्षा लेते हैं भक्त की, कि देखे ये मुझसे ज्यादा प्रेम करता है या मेरे ऐश्वर्य से प्रेम करता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भाई भगवान को अपना मानना चाहिए अपना। हम यदि भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर मान करके उपासना करते हैं, इससे हमारे और भगवान की दूरी होती है। और भगवान को अपना मान करके भगवान की उपासना करते हैं, इससे हमारी भगवान के साथ नजदीकी बनती है, भगवान के हम करीब पहुंचते हैं। एक बार की बात है, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा और कहा कि गर्गाचार्य जी आप जाओ ब्रज में जाकर के, और वहां हमारे दो बच्चा है, एक रोहिणी का बेटा है एक यशोदा का बेटा है, दोनों की जन्म कुंडली बना लाओ, पर हल्ला गुल्ला मत करना, नहीं तो कंस है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। कि बात तो सही है। तो गर्गाचार्य जी ब्रज में चले गए, वहां घूमते रहे इधर उधर सामान्य तैयारी। एक दिन मिल गए यह जो है नंद बाबा। अरे ओहो गर्गाचार्य जी, मैं तो आपको ढूंढ रहा था, कई दिनों में आप मिले हैं, हमारे यहाँ दो बच्चे हैं, जरा उनका नाम वगैरह नामकरण संस्कार करवा दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो जी नंद जी, आप तो थोड़ा भी कुछ काम करते हैं तो हाय हल्ला बहुत करते हो। आपके यहाँ लाला ने जन्म लिया, कितना बड़ा आपने उत्सव मनाया, सारी त्रिलोकी को पता चल गया कि आपके यहाँ पर एक लाला ने जन्म लिया है, और उसके बाद आपने करवट बदलने का उत्सव किया तो वहां पर भी देखो सबको पता चल गया। फिर नामकरण संस्कार में आप पीछे थोड़ी रहेंगे, नामकरण संस्कार भी आप ऐसे ही धूमधाम से करेंगे, और मेरे पीछे कंस लगा हुआ है इसलिए मैं तो आपका नामकरण संस्कार नहीं। बाबा यदि आप ऐसा कहते हो तो हम किसी को भी नहीं कहेंगे, देखो आप जानो और मैं जानू, और दो रोहिणी और यशोदा उनकी गोद में बच्चे हैं, चारों तरफ गाय ही गाय खड़ी करने के बीच में बैठ जाएंगे, देखो गऊ पर कैसा विश्वास है, चारों तरफ गाय गाय रहेंगी अपने। अच्छी बात, चले आए गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी बैठ गए, नंद बाबा बैठ गए, रोहिणी जी बैठ गई, यशोदा जी बैठ गई। अब भगवान गर्गाचार्य जी ने पहले बलराम जी का हाथ देखा, छोटे से बलराम जी सीधे साधे, बेटा हाथ दिखाओ देखें, तो बलराम जी ने हाथ कर दिया है। हाथ देखे कहा कि देखो ये बल में बड़ा श्रेष्ठ होगा, लोग इसको बलराम कहेंगे, ये आपस में प्रेम कराने वाला होगा इसलिए इसको संकर्षण कहेंगे, और ये सुंदर भी बहुत होगा इसलिए इसको राम बोलेंगे। बलराम जी का तो काम हुआ, छुट्टी हो गई। कृष्ण भगवान तो बहुत चंचल, अपना मुंह अंगूठे में लिया हुआ, और देखे गौर से ही गर्गाचार्य जी, गौर से देखे। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा जी आपके बच्चे का हाथ दीजिए ना, हाथ देखेंगे तो वो अपना हाथ देवे ही नहीं। यशोदा जी कहा ना मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? तो फिर जबरदस्ती हाथ पकड़ा यशोदा जी ने, और हाथ पकड़ करके और ये अंगुलियों मोड़ करके, लो पंडित जी मैं भी जोर लगाती हूँ, थोड़ा आप भी जोर लगाओ, और लो देखो इसका हाथ देखो। वो हाथ देखने लगे तो बच्चे की आदत है कि वो माँ के मुंह के पास आकर बोलता है। बच्चे को क्या पता कि कान से सुना जाता है कि मुंह से सुना जाता है। बच्चा देखता है कि जहां से बोलते हैं वहीं से सुनते हैं, तो वो पास में मुंह लाकर के बोलने लगा, मैया आप कहो तो मैं इन पंडित जी की जन्म कुंडली सुना दूं। तो ये पंडित जी ने सुन लिया। पंडित जी ने कहा अरे अरे भैया मेरी जन्म कुंडली मत सुना देना, मेरे पिछले जन्म में जाने क्या क्या पोले हैं, क्या क्या मैंने पाप किया अन्याय किया होगा, अरे उसको खोल देगा तो दुनिया में मुझे रोटी कोई नहीं खिलाएगा, बस है जैसी रहने दे, है जैसी रहने दे। तुम्हारी बात जरूर मैं बताता हूं। देखो यशोदा जी, ये जो बालक था ये तरह तरह का रंग बदलता है। सतयुग में गौर वर्ण का था, त्रेता में लाल वर्ण का था, और फिर जो है पीले वर्ण का होकर अब ये काले वर्ण में आया है। ये पहले कभी वसुदेव जी का बेटा रहा, इसलिए लोग इसको वासुदेव कहेंगे। पर एक बात है, इसके द्वारा आप बड़ी बड़ी आफत को जीत लोगे। मैंने भगवान नारायण की कुंडली बनाई है, नारायण की कुंडली और इसकी कुंडली मिलती जुलती है, कोई अंतर नहीं है। ओह, ऐसी कुंडली है कि कुंडली के हिसाब से तो यही है। आप ऐसा करो, इन दोनों बच्चों की खूब रक्षा करो, और जिसमें ये जो है आपका छोटा ही ये छोटा बच्चा है, इसको तो विशेष रक्षा करना। ये नारायण के समान गुण वाला है और गोपायस्व समाहित है। सावधानी से इसकी रक्षा करना, घर से बाहर जाओ अकेले मत छोड़ना, और तुम इसको लेकर के जाओ तो अकेले मत जाना, तुम अपने साथ में बहुत से झुंड को रखना। नंद जी बहुत खुश हो गए कि अरे मेरा बेटा नारायण के समान है। अब जो है भगवान गुडाली चलने लगे। गुडालिये गुडालिये चलते थे तो हाथ के नूपुर, हाथ के झुनझुनी और पैर के झुनझुनी आवाज आती रहती थी, तो उससे भी भगवान बहुत खुश होते थे। हाथ और भगवान अकेले में खेलते हो झुनझुन की आवाज से। बलराम जी भी खेलते तो माताएं उनको छिप छिप के देखती और उनका खेल देख देख कर बहुत प्रसन्न होती। कभी कभी बछड़ों के साथ बैठकर खेलते, कभी कभी ये पक्षियों के साथ खेलते, कभी कोई तीखी धार वाली चीज तलवार वगैरह होती उसको पकड़ करके खेलने लगते तो दौड़ी दौड़ी माँ आती और उसके हाथ से तलवार वगैरह छीन लेती है, अरे बेटा कहीं लगा लोगे तुम। ऐसे करके उन माताओं को चैन नहीं मिलता था, बच्चे कुछ न कुछ करते ही रहते थे। परंतु उन माताओं को और काम की जगह छोड़ करके इनके साथ रहने में आनंद भी तो आता था। अब भगवान दौड़ने कूदने फांदने लग गए। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, भगवान क्या करें कि अब अपने घर में और पास पड़ोस के गोपियों के घरों में जा जा करके माखन की चोरी करें। अब लोग कहते हैं भगवान माखन की चोरी करते थे। देखो, जो आदमी ये चाहता है कि मेरे यहां आकर के लिए आदमी गुप्त रूप से चीज ले जाए और मैं देखता रहूं क्या वो चोरी होती है। घर का मालिक खुद चाहता है कि ये चीज मैं इसको दे दूं, वो चोरी नहीं होती। चोरी तो उसकी नजरों से और उसके हृदय से छिप करके उसके वस्तु को अपनी वस्तु मानता है, वो चोरी होती है। भगवान कभी चोरी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही सारा संसार है। भगवान के अतिरिक्त किसी और का स्वत्व होता और उस स्वत्व को छीन करके भगवान अपना स्वत्व लगाते तो भगवान चोर कहलाते। भगवान चोर नहीं है, भगवान तो साहूकार है, सारे संसार को अपना दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, अपनी वस्तु दे रहे हैं भगवान। उन भगवान के लिए कहा जाता है कि चोरी की उन्होंने, माखन चोर है ये। माखन चोर कहते हुए भगवान को भी अच्छा लगता है सुनते हुए, और भक्त को भी कहते हुए अच्छा बहुत लगता है। एक भक्त ने कहा कि तू रात में क्यों जन्मा रहे, चोरी करने के लिए। कि चोर होते हैं वो रात्रि में सावधान रहते हैं, वो दिन में तो सोए रहते हैं रात्रि में सावधान रहते हैं, तो चोर इसीलिए बना है, रात्रि में इसीलिए जन्म लिया है कि तू सावधानी पूर्वक सब चोरियां कर सके, इसलिए बना है। पता चल गया आपको। तो ये अपने घर में चोरी करते थे, यशोदा जी देखती थी तो भाई यशोदा जी को बहुत अच्छा लगता है। एक बार यशोदा जी के माखन लेकर चोरी करके वो खा रहे थे, सामने एक खंबा था मणियों का, मणि जड़ित खंबा, उसमें उनका चित्र आया, भगवान का प्रतिबिंब पड़ा। भगवान कहने मैया मैया देखो तुमने, मैया ने पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा देखो मैया रोज तुम मेरा नाम लगाते हो ना, ये देखो आदमी ने पकड़ के बता दिया, ये देखो ये मक्खन चोर है, ये देखो मक्खन खाता है, इसके मुंह पर मक्खन लगा हुआ है। भगवान की ये एक चतुराई देख करके माँ बहुत खुश होकर के छाती से लगाई, बेटा इतना तो मैं समझती हूँ ये तेरा प्रतिबिंब है कि ये कोई दूसरा है, ऐसा इतना मैं भोली थोड़े ही हूँ। पर भगवान की ये चतुराई, ये बालपना देखकर माँ बहुत खुश होती है। और ये बात यशोदा जी पास पड़ोस की सब गोपियों को सुनाती है कि देखो ये बच्चा कितना चंचल है और कैसी कैसी बातें बनाता है। तब उन गोपियों के मन में आता है अरे ये कृष्ण कभी हमारे भी घर में आए और ये हमारे घर चोरी करे, इसको चोरी करते हुए हम भी देखें। ये एक उपासना है, उपासना। देखो माखन चोर की लीला से भगवान कितने कितने बदनाम हो गए, परंतु भगवान को भक्तों के आनंद में अपनी बदनामी सहन करने में भी आनंद ही है। ये कृष्ण हमारे घर में आए और घर में आकर के ये कृष्ण हमारे माखन की चोरी करे और हम इसे देखें, ऐसी इनके अंदर लालसा थी कृष्ण में। इसलिए उन गोपियों ने ऐसा मन में विचार किया तो भगवान तो भाई एक अपना स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसा बसते हैं मैं उनके साथ में वैसा ही रहता हूँ, वैसा ही उनको स्वीकार करता हूँ। तो भगवान चले गए गोपियों के घरों में, खूब चोरियां की। अब चोरी करके भगवान भगने लगे, तब उनके मन में आया, गोपियों के मन में आया कि अरे कृष्ण तो वापस घर पर चला गया, तो उस कृष्ण का मुख देखने के लिए चलो। तो सब के सब गोपियां इकट्ठी होकर आती हैं हमारे यशोदा जी के पास, आकर के बोलती है कि देखो तुम अपने कृष्ण को समझाओ, डांट करके बोलती है और कृष्ण का कसूर निकालते हुए बोलती है। अब आप थोड़ा इसका अर्थ है ना, इसका दो अर्थ निकलता है जो अब बोला जाएगा। एक अर्थ में कृष्ण की शिकायत है और एक अर्थ में कृष्ण की बड़ी अलौकिक छिपी हुई महिमा है। शिकायत और महिमा दोनों एक ही शब्दों से कह दी जाए, ये कहने वाले का ही वास्तव में ये बहुत ही बड़ा जो है ये कला ही, बहुत बड़ी कला कहनी चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञान ही कह सकते हैं। ध्यान से सुनना, देखो वो गोपियां आकर बोलती है, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सह स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पितैस्ते ययोगै। देखो जी तुम्हारा लड़का, तुम्हारा ये कन्हैया हमारे घर आता है और वत्सान मुंचन क्वचित असमय, बिना समय बछड़े को खोल देता है, और जब हम इसको डांटती है तो ये नाराज होता है, हमारे सामने हंसी उड़ाता है, ये हमारी हंसी दिलगी करता है। और चलो कोई बात नहीं, परंतु ये चुरा चुरा के क्यों खाए? क्या तुम्हारे घर में माखन की कमी है? क्या हमारे घर में कमी? मांग के क्यों नहीं लेता? ये चुरा के ही लेता है और मीठा मीठा लेता है, मीठा मीठा माखन। हमने मक्खन के अंदर कई पड़ते डाली, ये कल का मक्खन, ये परसों का मक्खन, ये वहां ऊपर ये आज का मक्खन, कभी हम आज के मक्खन को बीच में डाल देते हैं, कभी आगे पीछे करते नहीं, पर ये अभी का ताजा मक्खन लेता है, ताजा मक्खन में मिठास होता है, ये वो ताजा मक्खन लेता है। और लेता है सो कोई बात नहीं, खुद खाए तो कितना खाए यशोदा जी, इतना सा इसका पेट है, परंतु ले लेकर के ये बंदरों को खिलाता है और जिसमें मक्खन नहीं मिलता उस पात्र को वो फोड़ देता है, और यदि इसके हाथ में नया है तो ये जो है तरह तरह के उपाय करके ऊपर चढ़ जाता है और वहां जाकर के पात्र में छेद करता है और फिर वो मक्खन ले लेता है। अंधेरे में छिपा के हमने देखा तो ये मणि के प्रकाश से उसको ढूंढ लेता है। ऐसी ऐसी ये दुष्टता हमारे यहां करता है, इसका कोई न कोई आप प्रबंध कर लीजिए, इलाज कर लीजिए, नहीं तो फिर हमें कभी इसको दंड देना पड़ सकता है। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण का मुख देखने के लिए यशोदा जी को उपालंब दे रही है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण उस समय यशोदा जी के पीठ के पीछे खड़े हैं और ये डांटते हैं कि अभी तो तुम देखो मेरी शिकायत करती हो, मौका आएगा तो तुम्हारी एक एक शिकायत का बदला लूंगा। डांटते हैं भगवान कि देखो ये तुम्हारा बेटा हमको डांटता भी है, ये हमको धमकाता भी है। तो भगवान ये पीछे देखे तो उसी समय में वो यशोदा जी पीछे देखे ना तो कृष्ण रोने लगते हैं। यशोदा जी के मन में आ रही ये तो रोने लग गया। यशोदा जी ने उसके साथ बहुत स्नेह किया। ये तो है एक शिकायत पक्ष। अब देखो भगवान गए अपने घर को छोड़ करके गोपियों को इकट्ठा किया, गोपियों से कहा कि देखो गोपियों अब तुम्हारे घर हम नहीं आएंगे, हम तुम्हारे घर चोरी नहीं करेंगे, तुम तो हमारे लिए शिकायत करते हो, माँ के पास में जाकर हमको ओछा पटकती हो, इसलिए हम तुम्हारे घर है नहीं। नहीं कन्हैया हमने कहाँ शिकायत की है। अब देखो शिकायत को महिमा में सुनिए आप, हमने कोई शिकायत नहीं की है। अरे शिकायत नहीं की तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि बिना समय में बछड़ों को खोलता है? अरे कन्हैया ये शिकायत है, तू इसको शिकायत समझता है? हमने तेरी प्रशंसा की है। प्रशंसा? हाँ प्रशंसा। कैसे कैसे प्रशंसा की? कि बताओ देखो तुम भगवान हो और तुम बिना समय ही अपने भक्तों का कल्याण कर देते हो। जिस भक्त का कल्याण करना होता है उस भक्त के क्रियाकलाप आदि पर कोई विचार नहीं करते। असमय पूतना का उद्धार किया कि नहीं तुमने? पूतना को क्या भजन करने का मौका दिया? क्या तपस्या करवाई? क्या पूतना अधिकारिणी थी कल्याण करने की? असमय में ही जैसे तुमने पूतना का उद्धार कर दिया। तो यही बात तो हम कहने जा रहे थे कि वत्सान मुंचान क्वचिद असमये, असमय के अंदर ये उद्धार कर देता है। और तुमने जो ये मेरी शिकायत की कि हम जब क्रोध करती है तो ये हंसी करता है, हमारे सामने अंगूठा दिखाता है, वो क्या हुआ? अरे कृष्ण वो भी तुम्हारी प्रशंसा ही है। क्रोश संजात हास है, ध्यान देना, जब भक्त है वो तुम्हारे प्रेम में वो आक्रोश करता है, विरह करता है, तुमको उपालंब देता है, तुमको फटकार लगाता है, तुमको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ ये तो अच्छा लगता है। तो फिर ये कैसे कहा गोपियों कि ये मीठा मीठा चोर के खाता है? तो बताओ कृष्ण हम क्यों नहीं कहें ये बात? हमने जन्म जन्मांतर में कितने पाप किए हैं, कितने कुकर्म किए होंगे, परंतु उन सबको तुमने भुला दिया और एक इस जन्म में हमने कोई किसी प्रकार से सत्संग के माध्यम से या किसी उपाय से थोड़ी सी भी भक्ति की उसको आप चुपचाप स्वीकार करते होगे नहीं? ये भक्ति ही मक्खन है, मीठा मक्खन है, और इसको आप चोर के लेते हो, माने आप भक्त के सामने प्रकट होकर नहीं लेते, छिपे रहते हो और उसकी भक्ति को देखते रहते हो। फिर ये बंदरों को खिलाना क्या है? तुमने मेरी शिकायत की, बंदरों को खिलाता है, ये क्या है? अरे ये तो है ही, तुम कितने कृतज्ञ हो, कितने कृतज्ञ हो कि रामावतार में बंदरों ने सहायता की थी, उनकी भक्ति को आप कृष्णावतार में याद कर करके और खूब मक्खन खिला रहे हो। रामावतार में तुमने नहीं खिलाया, रामावतार में तुमने मक्खन नहीं खिलाया, कृष्णावतार में तुम खिला रहे हो। तो एक व्यक्ति, एक प्राणी यदि किसी भी जन्म में भक्ति करता है, उस भक्ति को आप कैसा याद रखते हो बताओ, वो भक्ति कैसे आपके चित्त में रहती है। और तुमने जो हमारे लिए ये कहा कि जब वो वस्तु नहीं मिलती है तो ऊपर चढ़ के देखता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हस्ताग्राह्य रतयति विधि। अरे हस्ताग्राह्य माने जब इंद्रियों के द्वारा तुम अग्राह्य होते हो, नेत्र के द्वारा अदृश्य होते हो, श्रोत्र के द्वारा अश्राव्य होते हो, नासिका के द्वारा जब तुम अनास्य होते हो, वाणी के द्वारा जब तुम अवाच्य होते हो, तो बताओ उस समय में भक्त तो आपकी भक्ति में लगा हुआ, तुम उसकी इंद्रियों में आते नहीं हो, फिर भी भक्त को आपकी भक्ति का लाभ होता है, वो तुम्हारे द्वारा दी हुई तो भक्ति होती है। द्रव्या लाभे रसेति विधिम, तुम ही तो वहां पर एक उपाय बनाते हो जिससे भक्त को ज्ञान हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है, तुमने तो हमारी बड़ी महिमा करी, पर एक बात बताओ, अंत में तुमने जो ये कहा ना कि ये अंधेरे में मणि के द्वारा देख लेता है, कि बिल्कुल ठीक बात है कृष्ण, इसमें हमने तुम्हारी कौन सी निंदा की है, ये जगत एक अंधेरा है, इसमें एकमात्र प्रकाश तुम ही तो हो, बाकी सब अंधेरा है, सब अज्ञान मोह निशा सब सोवन ही हारा। इसलिए इस अंधकार में एक प्रकाश रूप तुम ही हो। ऐसी बातें होने लगी, भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया। देखो गोपियों की बातें सुनी भगवान प्रसन्न हो गए, और गोपियों की शिकायत सुनी तो हमारी यशोदा जी प्रसन्न हो गई। शिकायत से भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियां और गोपी प्रसन्न हो गई यशोदा जी। एक बार की बात है कि ये बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते कृष्ण भगवान को खेलने में शामिल नहीं किया। क्यों? कि कृष्ण बात बात में कहने मैं जीत गया, हारे तो भी कहने मैं जीत गया, उसको अलग कर दिया, तुम अलग हो जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। मारवाड़ी कहते हैं क्यों रूंगस खावे, मारे ये गलती करता है, तो उसको अलग कर दिया। भगवान अकेले में बैठ गए, अकेले में बैठे क्या करे, वो मिट्टी खाए, अकेले में मिट्टी खाए। तो बच्चों ने देख लिया, बलराम जी से इशारा किया, बलराम जी ने कहा ठीक है। अब वो भगवान वो यो ले ले करके यो ले मुंह भर लिया है, और यहां से उनके थोड़ी थोड़ी मिट्टी वो बहने भी लगी, यहां खाई सी है ना, यहां से वो मिट्टी और मुंह की लार बहने लगी। पकड़े गए बलराम जी के द्वारा, सब साथियों ने चारों तरफ से आकर घेर लिया और उसके हाथ पकड़ लिए, चलो मैया के पास चलो। तो ले गए उसको, मैया तुम हमको रोज बोलती हो कि तुम शिकायत झूठी करती हो। मैं कहा देखो मैया ये झूठी शिकायत है, इसके मुंह के अंदर मिट्टी है मिट्टी। यशोदा जी ने हाथ दोनों पकड़ लिए। अब यशोदा जी क्या बोलती है, कस्मान् मृदमदात्मानं भवान् भक्षितवान् रह वदन्ति तावका इहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। अरे दुष्टात्मन अदान्तात्मन, देखो अदान्तात्मन माने कहते तो दुष्टात्मा के लिए है, पर भगवान के लिए शब्द तो अच्छा नहीं लगता, पर माँ तो कह ही सकती है, माँ है ना, माँ के लिए कोई बड़ा नहीं होता। यहां कहते हैं ए अदान्तात्मन, ए अपने आप को संयत न करने वाले, ये बात ठीक है, भगवान एक रूप में थोड़ी अवतार लेते, कितने रूपों में अवतार लिए हुए हैं, देखो कितने रूप है भगवान के। ए अदांतात्मन कस्मात मृदम भक्षितवान, तुमने मिट्टी क्यों खाई और अकेले में खाई। और देखो आज पहली बार यशोदा जी कृष्ण को भवान बोलते हैं, भवान। संस्कृत जानने वाले जानते हैं कि भवत शब्द का प्रयोग बहुत आदरणीय होता है, उसके लिए होता है, पर मां पुत्र के लिए, पिता पुत्र के लिए भवत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। बेटा कर सकता है, परंतु मां बाप पुत्र के लिए भवत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। भवत शब्द का अर्थ होता है आप, तो यहां बोलते हैं कि आपने मिट्टी खाई है, आपने। कैसा शब्द निकला है यशोदा जी के मुख से, आदर का शब्द निकला कि मैया तुम्हें क्या पता कि वदंती तावका ये तेरे लोग ही बोलते हैं, और कुमारा और ये तुम्हारे साथी लोग बोलते हैं, और अग्रजो पेयम और तुम्हारे से पहले पैदा होने वाला बलराम भी बोलता है। ये बात तो हो गई, पर इस बात में देखो गहराई से क्या प्रश्न है हमारे यशोदा जी का। यशोदा जी पूछती है कि देखो तुम बड़े स्वैरवर्ती हो, अदांतात्मन माने अपने आप को तुमने वश में नहीं किया, अनेक रूप बना सकते हो, और अकेले में मिट्टी खाई, अकेले में जिस समय तुमको कोई नहीं देखता था। तो कहा मैया कोई नहीं देखता था तो तुमने कैसे देख लिया कि ये बोल रहे हैं ना, कि ये बोलते हैं, ये देखते हैं क्या मेरे को मिट्टी खाते हुए। यशोदा जी से बोलने में नहीं आया। भगवान कहते हैं मैया मैं अकेले में मिट्टी थोड़े ही खाता हूं, मैं अकेले में सारे संसार को खाता हूं। देखो सारे संसार को, ये सारा संसार मुझ में ही तो लीन रहता है। मैं मिट्टी क्या खाता हूं, मिट्टी भी खाता हूं, आग भी खाता हूं, मैं आकाश भी खाता हूं, वायु भी खाता हूं, समुद्र भी खाता हूं, सब करता हूं, सबको मैं खाता हूं। बोलो भैया। तो भगवान कृष्ण क्या बोले, ये तो है बाद का अर्थ, पहले पहले ही पहले बार। अब अर्थ क्या है भैया, नाहम बख्शितवान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या भी सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, और तुम भी इन झूठ बोलने वालों के साथ हो गए। ये बोलते ही है, ये देखते कहा है मेरे को मिट्टी खाते हुए, कब देखा है इनमें से किसी ने भी देखा, कोई उस समय था क्या मिट्टी खाई तब, मैंने कभी मिट्टी नहीं खाई। और यदि खाई है तो एक मिट्टी नहीं खाई, ले मैया देख तुम्हारे सामने इनकी वाणी सत्य है कि मेरी वाणी सत्य है, लो तुम खुद ही देख लो, अब मेरे मुख में देख लो। तो भगवान ने मुंह खोल दिया है। भगवान को डर नहीं था कि मेरे मुंह में मिट्टी देख लेगी तो मैया मुझे क्या कहेगी, भगवान ने देखा क्या देखेगी, मेरे मुंह में है वही तो देखेगी। भगवान ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने नाहम बख्शितवान, मैंने नाह खाया, नाह नाह क्या होता है, ऋणह बंधने, ये नेतना होता ना गाय के पैर को बांधते गाय दूते समय में, तो नेतना बोलते हैं उसको, डोरी बोलते हैं ना, विशेष डोरी होती है ये, वो उसका नाम नाह होता है, नाह संस्कृत में उसको नाह बोलते हैं। नाह माने बंधन, मैंने बंधन को खाया है मां, मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं खाया, जीव मात्र का जो बंधन है जिससे जीव ये बंधता है, मैंने वो चीज खा ली ताकि बेचारा जीव स्वच्छंद हो जाए, खुला हो जाए, मां मैंने बंधन नहीं खाया है, नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने बंधन खाया है। और वो बंधन कहां होता है, इस सृष्टि में होता है, और इस सृष्टि में कितनी चीजें हैं कि लो मेरे मुंह में देखा, ऐसे करके मुंह खोला तो भाई इस मुंह के अंदर उसको समुद्र दिखाई दिए, पृथ्वी दिखाई दी, ज्योतिष चक्र दिखाई दिए, वायु अग्नि सब दिखाई दिए, और उसी के अंदर ब्रज दिखाई दिया, ब्रज के अंदर अपना मकान भी दिखाई दिया, और मकान के साथ साथ में उसके पिताजी भी दिखाई दिए, नंद जी भी दिखाई दिए, और यशोदा जी ने अपने आप को भी उसके मुख में देखा। अरे क्या है, क्या है, किम असौ किम असौ किम असौ किमिदम किमिदम कोसौ कोसौ, क्या है ये, क्या है, किमिदम, ये क्या हो गया, क्या है। अब वो यशोदा जी थोड़ा सा यूं ध्यान लगाने लगी कि एक ही मुख में ये अनेक चीजें किसी मामूली व्यक्ति में तो हो नहीं सकती, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वरी तो नहीं है। ऐसे वो कृष्ण के अंदर परमात्मता देखने ही वाली थी, तो भगवान ने एक माया फैलाई, वैष्णवी माया। वो क्या माया थी कि ऐश्वर्य के ऊपर माधुरी माधुरी कर दिया। तो सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, उसी समय में उसको क्या देखा सब वो भूल गई और अपने बेटे को गोद में ले लिया, और भगवान रोते रोते कहने लगे मैया सब झूठ बोलते हैं। हाँ बेटा सब झूठ बोलते हैं, देखो देखो मैया मैंने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, तूने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोलते हैं कि हाँ सब झूठ बोलते हैं। ऐसी माया फैलाई भगवान ने। ये माया, इसी माया का प्रसंग क्यों आया कि पहली बात तो यह है कि ये सृष्टि का रूप है, यहाँ माँ से बंधन, बाप से बंधन, घर से बंधन, और ये पंचभूतात्मक सृष्टि है, इंद्रियां ही, सब में जीव का बंधन होता है, ये बंधन की गुंजाइश है। इसलिए भगवान ने कहा मैंने तो बंधन खाया है, देख लो, ऐसे मुंह करके दिखाया कि यही तो बंधन होता है जीव का, और कहां बंधन होता है बताओ। यशोदा जी को और नंद बाबा को दिखाने का अर्थ क्या, यशोदा जी को ही देख रही है और यशोदा जी नंद जी को भी देख रही है। अब वो यशोदा जी है कि ये यशोदा जी, ये खुद यशोदा जी को पता नहीं है। इस प्रकार से ये देखे तो भाई इति विदित तत्वायाम, वो तत्व तक पहुंचने वाली थी, इतने में ही भगवान ने एक ऐसी माया फैलाई, उस माया के कारण से गोपी को वो याद ही खत्म हो गई कि मैंने इसके मुंह में क्या क्या देखा है। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, और वेदों में जिसकी बड़ी महिमा गाई गई है, ऐसे भगवान को उसने केवल अपना बेटा माना और उसको बार बार छाती से लगाया। राजा ने पूछा कि महाराज ये नंद जी कौन थे, यशोदा कौन थी। सुखदेव जी ने देखो इस प्रश्न को बहुत छोटे में कह दिया, इससे क्या मतलब है, नंद जी कोई हो, यशोदा जी कोई हो, अरे इनका प्रेम देखो, प्रेम, ये कौन थे, ये द्रोण नाम के वसु थे, यशोदा धरा थी इनकी पत्नी, ब्रह्मा जी के आदेश से तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि देखो तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो वही नंद और यशोदा बन करके आए और भगवान मिल गए, अनायास ही मिल गए। तुम ये क्यों पूछते हो कि ये कौन थे, तुम ये देखो कि ये क्या कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं। एक बार यशोदा जी दही का मिलोना कर रही थी, कृष्ण का नाम ले ले करके वो कृष्ण की लीलाओं को याद कर करके मुग्ध हो रही थी, ऐसी मुग्ध हो रही थी कि उसकी चोटी में से फूल गिर रहा है तो पता नहीं है, और दही मिलोते मिलोते कि देखो ये दही क्यों मिलो रही है, ये कृष्णार्थ दही में मंथन हो रहा है, कृष्णार्थ दही मंथनम, ये दही मिले, दही मिलोगी मक्खन निकलेगा और इस मक्खन से कृष्ण है, ये कृष्ण हृष्ट पुष्ट होगा, इसको खिलाएंगे, नहीं ये मांगेगा। तो कृष्ण के लिए वो दही का मिलोना कर रही थी। देखो पुराने जमाने में बच्चा जहां सोते रहते थे, माताएं वो दही मिलोना करती, उसकी एक आवाज आती थी, घुर घुर आवाज आती थी, उस आवाज से बच्चे के कान में सुनने की शक्ति बढ़ती है, और फिर वो जो है दही का मिलोने वाले दही का कोई छांटा लगता था, और उस छांटे को लेकर के माँ उसके कपोल के ऊपर यूं मसल देती थी, उससे बच्चे का चेहरा दे दीप्यमान होता था, कहाँ आजकल बिलोना है, कहाँ दूध है भाई, कहाँ गाय है। गाय के ढीकने की आवाज से हमारे मन के हृदय के रोग कम होते हैं। डॉक्टरों ने कहा है हमारे हिंदुस्तान की गाय है सीधी गाय हो उसके ऊपर यू हाथ पोलो यू, और डॉक्टर और वो जो गाय की कम्बल होती है यहाँ उस कम्बल में यू खूब उसको सुहाता सुहाता हाथ पोलते जाओ, उसके स्पर्श से यहाँ की नसों को एक ऐसा आराम मिलता है कि हार्ट की बीमारी दूर होती है। ये डॉक्टरों की कही हुई बात है। और उसकी जो ये थुई होती है उस थुई पर हाथ फेरने से सौर सूर्य की जो ऊर्जा उसमें आई है वो हमारे अंदर पहुंचती है। गाय के यहाँ सींग के यहाँ खाद करने से गाय को बहुत सुख मिलता है, क्योंकि गाय और जगह तो कहीं खाद कर सकती है, सींग के यहाँ खाद करने में बड़ी तकलीफ होती है। गाय के देखो ये कान है, इन कान के अंदर मिट्टी बहुत भरी रहती है, उससे खाद आती रहती है, छोटे छोटे चीचड़ खाते रहते हैं। तो कोई कपड़ा वगैरह लेकर के या हाथ से करे तो और भी ठीक है, मुलायम रहता है हाथ, उस हाथ से धीरे धीरे मिट्टी निकालो, गाय यूं खड़ी रहेगी, यूं बहुत सुहाता है। गाय देखती है अरे मेरे यहाँ खा जाती है, खा जो करे। गाय को आप पपोलो इतना सुख मिलता है गाय को, फिर आप दूर चले जाओ वो गाय वापिस आकर आपके टक्कर लगा के चिपती हुई जाएगी, वो चिपती हुई वहां खड़ी हो जाएगी, सींग लगाएगी मुझे वापिस कुचरो, और वो जब जीभ सी चाटती है हमारे शरीर के त्वचा के जो रोग होते हैं, और ये रोमावली जो है ये बंद हो जाती है, रोमावली गाय के चाटने से साफ हो जाती है, त्वचा साफ हो जाती है, गाय से बहुत लाभ होता है। तो यशोदा जी उस समय मिलोना कर रही थी, कृष्ण का गुणगान गा रही थी, इतने में ही कृष्ण भगवान जग गए और मैया को मना किया कि नहीं माँ मुझे मक्खन नहीं, मुझे तो दूध पिलाओ। अरे बेटा तूने कभी दूध के लिए कहा ना मुझे दूध पिलाओ। देखो जो भगवान के लिए काम करता है उसको भगवान यूं स्वीकार करते हैं, नहीं मुझे मक्खन नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए। मक्खन तो है अभी यहाँ मटके में और दूध तो मैया तुम्हारे अंदर ना, मुझे दूध चाहिए। तो ले बेटा दूध पी ले। अब वो दूध पीने लगे भगवान, तो यशोदा जी बड़ी खुश हो रही है। इतने भी एक दूसरा दूध उफन रहा था, यशोदा जी ने मटके को भी छोड़ा, दही को भी छोड़ा और कृष्ण को भी छोड़ा और उफनते हुए दूध को जाकर के बचाने लगी। तो भगवान को बुरा लगा कि अरे मदर्थ कर्म भी छोड़ दिया और तुमने मेरा भी त्याग कर दिया, तो अब तुमको देखो कौन सा ये मक्खन मिल जाएगा। उठा करके पत्थर लेकर मक्खन का वो चाडा फोड़ दिया। मटका फोड़ देने के बाद में यशोदा जी को बहुत बुरा लगा, अपने हाथ में डंडा लेकर के वो दौड़ने लगी, आगे आगे भगवान और पीछे पीछे हमारे यशोदा जी, छोटे से भगवान वो तो दौड़ जाए कैसे, भारी शरीर वाली बिचारी यशोदा जी कैसे दौड़े। अब यशोदा जी जो है वहां पर बड़ी चिंता में पड़ गई, और इतना ही नहीं मक्खन ढुलाया भी और बंदरों को और बांट दिया। ऐसे करके यशोदा जी को बहुत बुरा लगा, तो दौड़ने के लिए यशोदा जी भागती भागती भागती, भागवत में तो नहीं आया है, एक जगह आए, कृष्ण तुम रुक जाओ, तुम्हें सतयुग के भक्तों की सौगंध है। कि नहीं मैया सतयुग तो चला गया, क्या सौगंध लगेगी। अच्छा त्रेता युग के भक्तों की सौगंध है कि नहीं मैया त्रेता भी बीत गया। अरे द्वापर के भक्तों की सौगंध है, द्वापर में तो मैं हूं ही, तो फिर तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, तू खड़ा रहेगा। हाँ कलयुग के भक्तों की सौगंध खड़ा रहो, कलयुग के भक्तों की सौगंध दिला दी, कलयुग के भक्त बड़े होते हैं। पकड़ लिया मां ने, अब बांधने लगे भगवान को, बांधने लगे तो बांधे तो भाई दो अंगुल की छेती रह जाए। ये दो अंगुल की छेती का अर्थ क्या है, भगवान कहते हैं मैं सबके बंधन में आने के लिए तैयार हूं। ये दो ही बात है बस, एक अहंता और एक ममता, दो का त्याग कर दे तो सबके बंधन में आ जाऊं। ये मैं हूं और ये मेरा है। भागवत में आगे 12वें स्कंद में लिखा है कि अहम मम इति दौर्जन्यम। महाभारत में आया कि दो अक्षरों से तो बंधन होता है और तीन अक्षरों से कल्याण होता है, बस इतना ही है। मुक्ति में और बंधन में दूरी कितनी है कि एक दो अक्षरों से तो बंधन होता है। मम इति भवेत बंध है, ये मेरा है इसमें बंधन हो गया। न ममेति विमुच्यते, यह मेरा नहीं है इसमें मुक्ति हो गई। तो अहंता और ममता के कारण से मैया ये लोग मुझे बांध नहीं सकते हैं, नहीं तो मैं तो सबके बंधन में आने के लिए तैयार हूं। तो कहा क्या मेरे में भी अहंता और ममता है क्या? यदि है तो वो मैंने तो वो तुझे दे दिए, जाओ मेरे अंदर कोई अहंता भी है तो तुम्हें अर्पित कर दी, और ममता है तो मैंने तुम्हें अर्पित कर दी। इतने भी भगवान बंध गए। भगवान कहते मैं सबके लिए बंधन में तैयार हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसके बाद भगवान को एक ऊखड़ से बांध दिया। ऐसा आनंद जो इस गोपी को मिला है, यशोदा जी को मिला है, न ब्रह्मा जी को मिला और न शंकर जी को मिला और न लक्ष्मी जी को मिला। इसलिए मैं ये कहता हूं परीक्षित, जो भक्तों को सुख मिलता है वो ज्ञानियों को सुख नहीं मिल सकता। इस प्रकार से भगवान ऊखल में बंध गए और फिर भगवान आगे क्या लीला करते हैं वो अपने 20 मिनट की मध्यम विश्रांति कर लेते हैं, उसके बाद में फिर तत्काल आगे की कथा कही जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोल दो।